harán. Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Raghupati Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Jai Shri Shri Ramachandra Bhagavan Ki Jai. Sitaram Lakshman Hanuman Ki Jai. Shri La Prabhupada Ki Jai. Lokabhiramam ranarangadhiram Rajivanetram Raghuvamshanatham Karunyarupam Karunakaram Tvam Shri Ramachandram Sharanam Prapadye. Shri Ramachandram Sharanam Prapadye. Shri Ramachandra Bhagavan Ki. तो पिछले रविवार हम हनुमान जी के बारे में चर्चा कर रहे थे. मैं बता रही थी कि रामनवमी पास में आ रही है तो हनुमान जी के बारे में चर्चा होनी चाहिए. श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के बारे में थोड़ी कीर्तन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको थोड़ा मस्का लगाएंगे कि हमें राम जी की सेवा करने का अवसर दे, हमें राम जी की भक्ति प्रदान करे. वो जैसे राम को प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसा प्रेम सेवा का भाव हमें भी दे. तो पिछले रविवार आई थिंक हमने 12 या 13 श्लोक खत्म किए थे, उसको एक बार हम फिर से पारायण करके आज के श्लोक से शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर विमल जशो जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिनु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियस दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। बस यही रोके थे हम लोग। लास्ट संडे हम डिस्कस कर रहे थे कैसे नारद मुनि और अन्य नारद सारद माने सरस्वती देवी, सारे मुनि, सनक आदि, चतुष कुमार सब जो है हनुमान जी के गुणगान करते हैं। और फिर हमने लास्ट में एक स्टोरी सुनी थी कैसे नारद मुनि हनुमान जी को गाना गाना सिखाते हैं, हनुमान जी बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं और फिर नारद मुनि की वीणा स्टक हो जाती है, याद आए? तो हम पिछले रविवार उधर थे, तो बस हम इस रविवार यहाँ से शुरू करते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। राम जी बोलते हैं कि सहस बदन माने 1000 मुंह से भी अगर तुम्हारा कीर्तन करे तो वो कम है, और ऐसा कहते हुए राम जी हनुमान जी को जो है गले लगा लेते हैं। अगर हम देखते हैं रामायण में ऐसी और एक घटना भी होती है जब राम जी हनुमान जी को गले लगाते हैं, कौन सी एक घटना है किसी को याद है? हाँ, तभी और एक बार बहुत बार हनुमान जी को जैसे एक गले लगाने का ये जो अवसर प्राप्त होता है राम जी के साथ, उतना सबको ये सुविधा या ये प्लेजर अवेलेबल नहीं है भगवान से डायरेक्टली गले लगने का। हाँ, तो हम सुनते और एक कथा में भी कैसे अयोध्या जब वापस आ जाते हैं, राम जी का राज्य अभिषेक हो जाता है, उसके बाद में कुछ दिन तक वहाँ पे वानर रहते हैं, और हनुमान जी एक बार खिड़की से देखते हैं सीता माता को, देखते हैं कि सीता माता लाल टीका लगाती है, सिंदूर लगाती है, और फिर हनुमान जी जाके अंदर से खिड़की से कूदते हैं और अंदर जाके पूछते हैं सीता माता को कि आप क्यों ये लगाती है, और सीता माता बोलती है कि क्योंकि राम जी को पसंद है। और जैसे सीता माता वहाँ से चली जाती है, वो जितना भी सिंदूर बचा हुआ रहता है हनुमान जी पूरा अपने शरीर में लगा देते हैं, और उसके बाद में जब राम जी के पास जाते हैं, राम जी पहचान नहीं पाते, बोलते ये कौन है, ऐसा तो किसी जानवर को देखा नहीं, और फिर हनुमान जी बोलते कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हनुमान हूँ। और फिर राम जी पूछते फिर तुमने ऐसी हालत क्यों बना के रखी है, फिर हनुमान जी बोलते कि मुझे लगा था आपको अच्छा लगेगा। तो राम जी समझे नहीं, तो बोले कि सीता जी जब इतना सा लगाती है तो आपको इतना अच्छा लगता है, मैंने तो पूरे शरीर में लगा दिया, अब मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा। फिर राम जी उसे गले लगा देते। तो यहाँ पे बोल रहे कि अस कही श्रीपति कंठ लगावे। भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं जब वो सीता का मैसेज देते हैं कि तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे दी है, इतना आनंद मुझे दिया है, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम भगवान का आलिंगन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हनुमान जी को आलिंगन किया था हमें भी आलिंगन करे। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, जब दूसरे जीवों को भगवान से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी हनुमान जी पे खुश हुए क्योंकि उन्होंने सीता जी की खबर दी। तो उसी तरह से सीता जी राम जी से दूर है, अशोक वाटिका में है, और सीता जी और राम जी का मिलन कराने में हनुमान जी मदद करते हैं। उसी तरह से ये जो सारे जीव हैं संसार में भगवान से दूर है, और जब हम मदद करते हैं सब जीवों को, हम भी उसमें से एक जीव हैं, लेकिन हम तो जा ही रहे हैं भगवान के पथ पे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के वजह से। सो उसी तरह से अगर दूसरे जीवों को भी अगर हम भगवान से मिलाने के प्रोसेस में मदद करें तो भगवान हमें भी आलिंगन करेंगे। अगर हमें भगवान का आलिंगन चाहिए, हमें प्रचार करना है। भगवद गीता के 18वां अध्याय में भगवान खुद बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे वो है जो मेरे बारे में प्रचार करता है, उससे ज़्यादा और कोई मुझे प्रिय नहीं है। तो इसलिए तो श्रील प्रभुपाद जी हम सबको सोल्जर बनाना चाहते थे कृष्ण की आर्मी में, कि आप सब मुझे मदद करो भगवान से जीवों को मिलाने की इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सनकादि ब्रह्मा मुनीसा नारद सारद सही सब लोग आपका गुणगान करते हैं हनुमान जी। उसके बाद बोलते हैं जम कुबेर दिकपाल जहाँ ते कभी को विद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा। बोलते जम जम माने यमराज, कुबेर दिगपाल जहाँ थे सारे कवि कोविद कह सके पंडित लोग सारे क्या करते हैं आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर पाते उतना आपका यश है हनुमान जी कह रहे हैं। सी नॉट ओनली नारद या सनत सनातन, देवता लोग भी हनुमान जी को बहुत प्रेम करते थे, उनका गुणगान करते थे, हनुमान जी उनकी रक्षा करते थे, उनकी मदद करते थे। हम रामायण में एक कथा सुनते हैं कैसे जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाते हैं तो वन बाय वन हर एक घर पे जा रहे हैं उसको जला रहे हैं, तो रावण के भी पैलेसेस वगैरह जला रहे हैं। तो जहाँ पे रावण का प्रिजन सेल था, कारागार जहाँ पे वो सब कैदियों को रखता है, उसको भी जब जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदर से आवाज़ आता है, बोलते हैं हनुमान हनुमान मुझे बचाओ। तो हनुमान सोचता है ये कौन है, देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अंधकार से भरा हुआ एकदम कारागार है, अंदर जाने की भी जगह नहीं, उतना टाइट बंद है। तो फिर हनुमान जी बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कौन है, शनि देवता। शनि देवता बोलते हैं रावण ने मुझे यहाँ पे बंद करके रखा है, क्योंकि ऐसा मानना है कि सारे देवताओं में से शनि देवता अगर जिसके तरफ देखे तो उसका भाग्य फूट जाता है। तो रावण ने बोला कि तुम मेरे तरफ देखोगे कैसे अगर मैं तुमको अंध कारागार में बंद कर दूँ। ऐसा बोला जाता था कि रावण इतना प्रतापी था और इतना शक्ति वाला था कि सारे देवता उनके पास काम करते थे, इंद्र उनके घोड़े को धोते थे, अग्नि उनके किचन में खाना बनाते थे, सारे देवता उनका काम करते थे, और कभी कभी देवताओं को अपने पैरों के नीचे रख के उस देवताओं को के ऊपर में पैर रख के उनकी पीठ पे पैर रख के वो सिंहासन में बैठते थे। इतना सारा डिस्क्रिप्शन जब हम सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो इतना पावरफुल था, राइट, जो इतना पावरफुल था वो भी अगर भगवान के वितरेक भगवान के अपोजिट काम करने के लिए कोशिश करेगा तो एक मिनट में उसका पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। तो जो शनि देवता थे, कभी कभी रावण क्या करता था, उनकी पीठ के ऊपर में पैर रख के सिंहासन पे बैठता था। तो एक बार नारद मुनि ने आइडिया दी, बोला पीठ पे पैर रखोगे तो शनि को इतना दर्द नहीं होगा, उसको सीधा होने के लिए बोलो उसके छाती पे पैर रखो तब उसको ज़्यादा दर्द देगा। तो रावण ने बोला ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, उसको टर्न होने के लिए बोला। जैसे उसको टर्न होने के लिए बोला तो क्या हुआ, शनि की आंखें रावण के ऊपर में गिरी, और फिर क्या हुआ, तब से रावण का बुरा काल शुरू हुआ, राम जी वनवास में आ गए, ये सारा कांड हो गया। तो फिर रावण को बुद्धि आई, कह रही ये तो कुछ गलत हो रहा है, तो इसने शनि को पकड़ के क्या है, कारागार में डाल दिया। और अब हनुमान जी जब सब कुछ जला रहे थे तो शनि देवता ने बोला मुझे यहाँ से निकालो, तो हनुमान जी ने बोला ठीक है। अब जब हनुमान जी ने शनि देवता को बाहर निकाला तो शनि देवता ने बोला लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है, अब मैंने आपके तरफ देख लिया, मैं जिसके तरफ देखता हूँ उसका तो बुरा होता है। तो हनुमान जी ने बोला अब मेरा क्या बुरा होगा, मैं तो राम का नाम लेता हूँ, जो भी है बुरा हो नहीं हो, सिस्टम इज सिस्टम, मुझे अब 12 साल जो है आपके साथ ही रहना है। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है आइए, कहाँ रहेंगे मतलब आपके सिर के ऊपर में। शनि देवता ने बोला ठीक है ऐसा कर सकते क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, आपने मुझे बचाया, आपको थोड़ा कंसेशन देता हूँ, 12 साल नहीं रहूंगा, कम से कम 12 दिन तो जो है आपके सिर पे रहूंगा। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है रहिए। उसके बाद में हनुमान जी ने क्या शुरू किया, सारे असुरों से फाइटिंग करना, लंका में सब कुछ जलाना करना, ओके हनुमान जी यहाँ से वहाँ कूद रहे, वहाँ से यहाँ कूद रहे, जिस तरह से हनुमान कूद रहे हैं सबसे फाइट कर रहे हैं, और शनि को बार बार मोच आ रही है। और थोड़ी देर में ही शनि इतना थक गए, हनुमान जी से बोलने लगे बस एक मिनट रुको मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर हनुमान जी ने बोला पर आपने तो बोला था 12 दिन रहेंगे। शनि देवता ने बोला नहीं नहीं ऐसा कंसेशन हो सकता है, 12 दिन नहीं 12 मिनट भी चलता है, बस 12 का है, बस 12 का नंबर मिनट भी चलता है, अब तुम तुम्हारे राम के काम में मैं मेरे काम में, मेरे को छुट्टी करो यहाँ से। फिर हनुमान जी को छोड़ के चले जाते हैं। पर ऐसे बोलने का मतलब ये है कि जो राम का नाम लेता है उसे कोई भी ग्रह नहीं डिस्टर्ब कर सकता। ये जो हमारी मेंटालिटी होती है ना, ये ग्रह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये देवता शनि का प्रकोप है, मंगल का, ये कुछ नहीं होगा। जब भगवान के काम जो करता है, भगवान का नाम लेता है, उसके लिए कुछ कोई ग्रह कोई राशि कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोलते जम कुबेर दिक बाल जहाँते कभी कोबित कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, तुमने उपकार किया सुग्रीव पे। क्या क्या उपकार किया हनुमान जी ने सुग्रीव पे, हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिला दिया। एक भक्त ही भगवान से मिला सकता है। मैं बहुत बार ये कहानी बताती हूँ कैसे कांचीपुरम में कांचीपूर्ण नाम का एक भक्त था जो वरदराज के मंदिर में सेवा करता था, और वो इतना अच्छा भक्त था कि भगवान से बातें करता था। और वरदराज जी जो है वो यज्ञ के मंडप से बाहर आए हैं तो उन्हें गर्मी बहुत लगती है, तो उन ड्यूटीज़ को वरदराज के ड्यूटीज़ को कांचीपूर्ण कंटिन्यूसली हवा दिया करता था, और भगवान को बहुत प्रिय था, भगवान से बातें करता था। कभी कभी रामानुजाचार्य को कोई प्रश्न होते थे तो वो कांचीपूर्ण को पूछते थे, कांचीपूर्ण वरदराज से जवाब मांगते थे और रामानुजाचार्य को बताते थे, उतना उनका रिलेशनशिप था। तो ऐसा होता था अक्सर कि शाम को शयन सेवा के बाद में जब भगवान को वो फैन करते थे, करने के बाद में जब उन्हें घर जाना होता था तो एक भक्त उन्हें काफ़ी मदद करता था। उन दिनों में तो स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो वो भक्त जो है वो केरोसिन का जो लैंप वगैरह है वो जला के घर तक उन्हें छोड़ के आता था, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार उसने पूछ लिया कि आप तो रोज़ भगवान से बातें करते हो, एक बार कभी पूछ लो मेरे मरने के बाद में वैकुंठ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो कांचीपूर्ण वरदराज से बोलते हैं कि वो जो भक्त है ना जो रोज़ मुझे शाम को घर छोड़ देता है, मुझे मदद करता है, मुझे अच्छा लगता है, क्या वो वैकुंठ जाएगा? तो भगवान बोलते हैं कि कांचीपूर्ण तुम मुझे इतने प्रिय हो कि तुम्हारे साथ जो भी कनेक्टेड है वो वैकुंठ जाएगा, तुम उसको बोल दो, वो जो तुम्हारी वो सेवा करता है ना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो कांचीपूर्ण उसको बोल देता है कि भाई मैंने आज पूछा तो भगवान ने बोला कि तुम वैकुंठ जाओगे, बहुत खुश हो गए। अगले दिन कांचीपूर्ण भगवान को फैन करते हुए उसको प्रश्न आया कि मेरा क्या होगा, तो वो कांचीपूर्ण भगवान को पूछते हैं कि ठाकुर जी मेरा क्या होगा, मैं क्या मरने के बाद वैकुंठ जाऊंगा? भगवान बोलते तुम नहीं जाओगे। तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे आसपास जो है मुझे प्रेम करते हैं मेरी सेवा करते हैं वो जाएंगे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो भगवान ने बोला क्योंकि वो तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे भक्त की जो सेवा करते हैं वो जाएंगे वैकुंठ, तुम तो डायरेक्ट मेरी सेवा करते हो, तुम नहीं जा सकते। फिर कांचीपूर्ण जो है भगवान को फैन करते हुए रुक जाता है और भगवान के हाथ में वो फैन देता है, बोलते फिर एक काम करो अपना फैन तुम खुद करो, मैं जाता हूँ किसी भक्त को ढूंढ के आता हूँ, मुझे आपने बोला ना किसी भक्त की सेवा करना है। अब वरदराज को फैन देता है, वो ढूंढता है कौन से भक्त की सेवा करूँ, अब वो जिसके पास जाता है सारे बोलते आप मेरी सेवा करेंगे, कैसे हो सकता है मैं आपकी सेवा, आप इतने महान भक्त हैं आपसे सेवा नहीं ले सकते। अब इसको तंग हो गया, मैं करूँ तो किसकी सेवा करूँ, कोई मेरी सेवा लेना ही नहीं चाहता। और फिर उसने क्या किया, अपने वेशभूषा बदल दी, कोई उसको पहचान नहीं सकता था। फिर गोष्ठीपूर्ण के पास में गया, बोला कि भाई मैं ऐसा जो है मेरा कोई नहीं है, क्या आप मुझे कुछ जगा देंगे? बोला ठीक है हमारे घर में गाय है ना, गायों की सेवा करो। तो फिर वो गायों को धोना खिलाना चराने ले जाना वो सब सेवा करने लगा कांचीपूर्ण के, कांचीपूर्ण क्या करने लगा गोष्ठीपूर्ण के घर में ये सब निम्न सेवा जो दास करते हैं, और उनके घर में एक सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगा। अब अच्छा से चल रहा है, उसको भी खुश है चलो एक भक्त के घर में मुझे सेवा मिली। अब थोड़ा दिन के बाद में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, एकदम थंडर लाइटनिंग और गोष्ठीपूर्ण को याद आया कि अरे मेरे घर में ये जो सर्वेंट है, सर्वेंट क्वार्टर में, उसके पास में कपड़े है कि नहीं, वो भीग गया होगा, जब गायों को चरा के लाया होगा तो भीग गया होगा, चलो उसको कपड़े दे के आता हूँ। तो हाथ में कपड़े लेके वो भागा, सर्वेंट क्वार्टर्स का दरवाजा खोला। अब कांचीपूर्ण को क्या हुआ था, कपड़े भीग गए थे उसके, तो उसने चेंज करके अपना पुरानी वाली जो पोशाक है, सोचा रात को कौन आएगा मेरे कमरे में, तो पुरानी वाली पोशाक जो है वो पहन के अच्छा से तिलक लगा के जो अपना जप करता है कर रहा था। जैसे इसने सर्वेंट क्वार्टर्स का दरवाजा खोला, देखा अरे ये तो कांचीपूर्ण है, अरे रे तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुमको ऐसा मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए, तुम तो डायरेक्टली भगवान से बात करते हो, तुम भगवान की सेवा करो, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। और फिर उसको रिक्वेस्ट करके जो है वापस भेज देते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं तब वरदराज जी बोलते हैं अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत गर्मी लग रही थी, तुम जो ये फैन की सेवा करते हो मुझे उसकी आदत है। फिर कांचीपूर्ण फिर पूछते हैं कि क्या है, फिर मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा वैकुंठ, बोलते हाँ अब तुम जाओगे, अब तुम जाओगे क्योंकि तुमने भक्त की सेवा की। तो यहाँ पे बोले सुगम अनुग, ये तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, हनुमान जी ही राम जी से मिला सकते हैं, हनुमान जी ही राम जी से मिला सकते हैं, भक्त ही भगवान से मिला सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस जो जन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। बोलते तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारी बात विभीषण ने मानी, इसलिए वो राम जी से मिल पाए और लंकेश्वर वो क्या बन गए, लंका के राजा बन गए तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसे अच्छी गाइडेंस दी। जब हनुमान जी लंका गए थे तो उनकी वो जिस तरह से रावण के साथ बात कर रहे थे, रावण काफ़ी क्रोधित हो गया था, उसको मारने के लिए तैयार हो गया था, तब विभीषण ने बोला कि दूत है उसको मारना नहीं चाहिए, चलो आपको एक पनिशमेंट दे दो लेकिन उसको जान से मत मार दो। तो अब सारे मिनिस्टर्स चर्चा करते बोलते वानर को तो अपनी पूँछ से बहुत प्रेम होता है, चलो उसकी पूँछ को जला दो। अब हनुमान जी की पूँछ को जलाएंगे तो क्या हो रहा है, जब जलाना है तो उसको पहले कपड़े से बांधना है, तो कपड़े को केरोसिन में डिप करके हनुमान जी की पूँछ पे जो है वो पूरा कपड़ा बांध रहे हैं कि उसको जलाएंगे, लेकिन जब कपड़ा बांध लेते हैं तो हनुमान जी अपनी पूँछ को लंबा कर देते हैं, फिर थोड़ा कपड़ा बांधेंगे तो पूँछ को लंबा कर देते हैं, अब उनके पास में कपड़ा नहीं है। तो लंका में जितने भी घर थे सबके घर से जो है कपड़ा और केरोसिन डोनेशन लेके आए, ये लोग कपड़ा दे दो, थोड़ा कपड़ा दे दो, पुराना कुछ कपड़ा है तो घर में दे दो। अब सबके पुराने कपड़े जो है लेके उसको जो है केरोसिन में ऑयल में डुबा के फिर हनुमान जी की पूछ को ये करते हैं। अब फिर हनुमान जी क्या बोलते हैं, बोलता है इतने सारे लोगों से जो ये कपड़ा मांग के लेके आए हो, सबसे जो फेवर लेके आए हो, सबका फेवर मुझे लौटाना है ना, इसलिए जिसके जिसके घर से कपड़े आए थे उसके उसके घर को जलाया भगवान जी ने। बोला आपने कपड़ा दिया केरोसिन दिया वापस तो देना पड़ेगा ना आपको, लेकिन विभीषण के घर से ना कपड़ा आया था ना कोई ऑयल आया था। तो हनुमान जी सबके घर को जलाते हुए जब विभीषण के घर के पास आते तब उन्हें कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, क्योंकि विभीषण के घर की दीवालों से भी राम 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 का नाम आता है। और फिर वो अंदर जाके देखते हैं कि अरे ये तो किसी भक्त का घर है, सब जगह वहाँ पे राम का नाम लिखा हुआ है, तो भाई बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर विभीषण से पूछते हैं कि भाई तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो, इतनी बड़ी लंका पूरी में तुम एज ए अलोन भक्त कैसे तुम जी पा रहे हो, क्या तुमको रावण आके तंग नहीं करता कि तुम ये सब राम का नाम क्यों लिखे हो। तो विभीषण बोलता है नहीं है, रावण को पता ही नहीं। बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, रावण तो आके आपके घर में देखा होगा। बोलता नहीं, रावण ने पूछा था एक बार कि तुम राम का नाम क्यों लिखते हो, तो मैंने रावण को समझाया कि राम का नाम नहीं है, राम माने रावण, माँ माने मंदोदरी, भाई का और भाभी का नाम मैं लिख के रखा हूँ। तो रावण बहुत खुश हो गया, बोले अरे तुम तो बहुत अच्छे मेरे भक्त हो, बहुत अच्छा, एक काम करो हर जगह लिखो राम राम, पूरे तुम्हारे पूरे घर के हर एक कोना में ये नाम होना चाहिए। फिर हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं और विभीषण को वो एडवाइस देते हैं कि तुम चलो राम की शरणागति लो। तो फिर विभीषण उनकी बात मानते हैं और राम की शरणागति लेने के लिए आ जाते हैं। कितनी सुंदर बात है एक्चुअली, जब हम भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं तो भक्त हमें सही एडवाइस देते हैं हमें क्या करना है, और जब भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं तब भक्ति जीवन में एंकरेजमेंट मिलता है। कभी कभी हम माया के उसमें इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि सही मार्ग क्या है। जब फिर से भक्तों का एसोसिएशन मिलता है तब एक एंथुजियाज्म, नहीं नहीं मुझे सेवा करनी, नहीं नहीं ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग ये है। इसीलिए तो शास्त्र में बोलते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र, अगर किसी प्योर डिवोटी के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करे तो आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना उत्साह आ जाता है। इतना उत्साह आ जाता था। बट ऑफकोर्स जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य कभी कभी ये बात प्रभुपाद जी से पूछते थे, बोला प्रभुपाद जी, बोला गया साधु संघ लव मात्र साधु संघ, तो हम तो आपके साथ में 24 आवर्स एसोसिएट करते हैं, लेकिन हम में क्यों कुछ चेंज नहीं आया, हम अभी भी ऐसे ही है, हम में क्यों चेंज नहीं आ रहा है। उसका मतलब दो चीज है, या तो शास्त्र में ये जो लिखा है वो रॉन्ग है, साधु संघ थोड़ा सा करने से चेंजेस आता है ऐसा नहीं है, या तो आप शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त का एसोसिएशन तो हाफ सेकंड लेने से भी इंसान चेंज हो सकता है। या तो आप शुद्ध भक्त नहीं है, या तो शास्त्र में जो कहा गया है रॉन्ग है, क्योंकि हम तो 24 घंटा आपके एसोसिएशन में, फिर भी हमें कुछ भी बदलाव नहीं है, हम जैसे है वैसे ही है, अभी भी माया अट्रैक्ट करती है, अभी भी और कहीं जाने का दिल करता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बोली, उन्होंने कहा कि जब आप लकड़ी लेते हो तो लकड़ी में जब आप मैच बॉक्स जलाते हो, आग लगाते हो, तो लकड़ी में आग जल जाती है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन अगर लकड़ी को पानी में भिगा देते हो उसके बाद में आग जलाते हो तो नहीं जलेगी लकड़ी। तो प्रभुपाद जी बोले तुम लोग सब पानी में भीगे हुए लकड़ी हो, कि इतना भी तुमको एसोसिएशन दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम भीगे हुए हो, अभी बहुत टाइम लगेगा उस स्टेज में आने के लिए जहाँ पे तुम्हारी पहले लकड़ियाँ सूखेगी, लेकिन जिस दिन सूख जाएगी लकड़ी उस दिन एक बात से तुम भक्त बन जाओगे, सिर्फ एक चिंगारी। अगर जलाना है तो कितना बार हमें मैच बॉक्स लेना पड़ता है, एक बार, कितना बार करते, एक बार करते और जल जाता है। तो जिस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे उस दिन शुद्ध भक्त का एक सेकंड का एसोसिएशन भी हमें प्योर डिवोटी बना देगा, एक सिंगल बात भी हमारे दिल को छू जाएगी और हमें अच्छे मार्ग में लेके चले जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इतना कचरा भरा हुआ है कि अगर ऊपर से कोई अमृत भी दे वो कचरा अमृत को भी जो है गंदा बना देता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि विभीषण जी को हनुमान जी का संग मिला, एक एक प्योर डिवोटी का फेस जब देखा तब उसे एंकरेजमेंट मिली कि नहीं मैं गलत जगह पे हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ लंका में, मुझे नहीं रहना है इन द हेड क्वार्टर्स ऑफ माया, मैं तो भगवान का, जब भगवान खुद आ चुके हैं अब मैं उनका एसोसिएशन लेना चाहूँगा, उनकी शरणागति लेना चाहूँगा। और फिर विभीषण आ जाते हैं राम जी के पास। अब जैसे वो राम जी के पास में आ जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि मुझे एक्सेप्ट करो, तब क्या होता है अंगद सुग्रीव सब बोलते नहीं 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 कुछ इसमें प्लान लग रहा है, वो तो एक राक्षस है, हमें उसका एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, तो भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, बोलते सकृदेव प्रपन्नाय तव अस्मि इति चा याचति अभयम दधामि सर्वदा अभयम एतद् व्रतम मम। बहुत सुंदर श्लोक, मतलब सकृदेव प्रपन्नाय, अगर कोई एक बार बोल दे तव अस्मि भगवान मैं आपका हूँ, इति च याचति भाव से कोई एक बार बोल दे कृष्णा राम मैं आपका हूँ, मेरे टेक केयर करो, बस खत्म हो गया। ददामि दूंगा क्या अभयम सर्वदा हमेशा अभयम भाई नहीं लगेगा उसको, मैं रक्षा करूंगा, ये मेरा व्रत है, एतद व्रत मम, ये मेरा व्रत है। बस हमें इतना ही बोलना है भगवान को कि मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करिए, पाही माम मुझे बचाइए, मैं सरेंडर्ड हूँ आपको, ठाकुर जी हमें देख लेंगे। हम रामायण की कथा में सुनते हैं ना कैसे वो रावण के जो दो गुप्तचर थे शुक और सारन, बहुत इंटेलिजेंट गुप्तचर थे, तो रावण ने उन्हें भेजा था कि जाके देखो राम की आर्मी में कितनी शक्ति है। तो शुक और सारन क्या करते हैं, बंदर का फॉर्म ले लेते हैं, वानर बन जाते हैं वो लोग, और वानर बन के वो जो है सब में घुल मिल जाते हैं। लेकिन विभीषण भी तो एक राक्षस था, वो इमीडिएटली उनको पहचान लेता है, बोलता है ये तो वानर नहीं है, ये तो रावण के दोनों दूत है, इमीडिएटली उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पकड़ते हैं वो दोनों क्या करते हैं, राम राम हमें बचाओ, राम राम, इमीडिएटली राम जी आके बोलते हैं इनको छोड़ दो। विभीषण बोलते हैं कैसे छोड़ दे, ये तो रावण के गुप्तचर है। भगवान बोलते हैं लेकिन मेरा तो व्रत है, एक बार मुझे अगर कोई बुला ले प्यार से तो मैं तो बचाऊंगा ही, तो एक काम करो उनको अच्छे से खाना वाना खिलाओ, और जो भी उनको जानने के लिए आए थे जरा समझा के भेज दो। अब ये लोग शौक हो जाते हैं कि ये कैसा आदमी है, अब इनको तो मजा आ गया, बोला उसका मतलब हम नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं क्योंकि राम हमें कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरी बार फिर आते हैं, फिर इस बार पकड़े जाते हैं, जैसे पकड़े जाते हैं वो फिर शुरू कर देते हैं राम राम राम, राम जी फिर बचा देते हैं। और फिर सुख और सारन इतने राम जी के प्यार में पड़ जाते हैं, वो रावण को जाके बोलते हैं इतने प्यारे हैं, एनीबडी कैन फॉल इन लव विथ हिम, कितना सुंदर स्वभाव है, हमें ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। और फिर रावण गुस्सा हो जाता है कि तुम राम के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे, बोलते आप भी एक बार मिलिए ना उनको, आपको भी प्यार हो जाएगा, इतने अच्छे है वो। तो रावण को शौक लग जाता है कि मैं जिसको भेजता हूँ वो राम के पागल क्यों हो जाते हैं। राम जी का स्वभाव ऐसा था, जो उनको मिलता था एक बार बस उनसे प्यार हो जाता था। जब रावण का बेटा इंद्रजीत, जब वो इंद्रजीत मर जाता है, तो इंद्रजीत बहुत पावरफुल था और इंद्रजीत की जो पत्नी थी सुलोचना, वो भी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। तो जब इंद्रजीत मर जाता है तो इंद्रजीत का जो सिर है वो राम जी के चरण में ये लोग रख देते हैं। इंद्रजीत का जो हाथ है वो उसके शरीर से कट के उसकी पत्नी के पास चला जाता है, सुलोचना के पास। अब उसका इतना ज़्यादा चेस्टिटी का पावर है, उसकी पतिव्रता नारी है, तो बोलती कि अगर मैंने मेरे पति के सिवाय किसी और के बारे में कभी ना मन से, वचन से, काया से कभी कोई गलती ना की हो, अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ तो बताओ मेरे पति को क्या हुआ। तो वो हाथ जो है, शरीर से टूटा हुआ हाथ, वो एक उसमें लिख के सुलोचना को बताता है कि युद्ध में क्या क्या हुआ और तुम्हारे पति का देहांत हो गया। तो फिर सुलोचना उस जो है उसको पकड़ के रोने लगती है कि अरे मेरे पति गुजर गए। और फिर जब वो रोने लगती है तो वो सती होने के लिए तैयार होती है। तो रावण उसको बोलते हैं कि तुम सती होने से पहले एक काम करो, जाके राम जी का आशीर्वाद लेके आ जाओ। तो सुलोचना बोलती है कि आप मुझे क्या बोल रहे, जाके राम जी का आशीर्वाद? हाँ, एक बार जाओ राम जी का आशीर्वाद ले, उसके बाद तुम जो है, क्योंकि उन दिनों में सती हो जाते थे पति के साथ में। तो सुलोचना बोलती, लेकिन आपको डर नहीं लगता, आप दुश्मन के कैंप में मुझे भेज रहे हो, भी मैं एक लेडी हूँ, विडोड हूँ, यंग हूँ। तो रावण बोलते कि नहीं नहीं, राम जी के कैंप में सब कुछ धर्म के अनुसार होता है। राम जी के जो मिनिस्टर हनुमान जी, वो बाल ब्रह्मचारी है। जो लक्ष्मण है वो सारे इंद्रियों की जय करके बैठे हुए जितेंद्रिय है। वहाँ पे सब कुछ धर्म के अनुसार होता है, वो धर्म सभा है, वहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, तुम जाके राम जी का आशीर्वाद ले लो। तो फिर सुलोचना आती है वहाँ पे, राम जी के पैर छूती है, फिर राम जी जो इंद्रजीत का जो मस्तक होता है वो सुलोचना को देते हैं। और फिर सुलोचना जोर जोर से रोने लगती है। फिर राम जी सुलोचना को बोलते हैं कि इतना मत रो बेटी, इतना मत रो, अगर तुम ऐसे रो रही हो तो मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इंद्रजीत को फिर से जिंदा कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ वापस, ये युद्ध बंद करते हैं, बस मैं तुम्हारे पति को मैं अभी जिंदा कर देता हूँ, छोड़ देते, इस युद्ध को बंद कर देते, लेकिन तुम रो मत, मैं तुमको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो सुलोचना और भी रोने लगती है। तो बोलते मैं रोना बंद नहीं, नहीं बोलते मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप इतने दयालु हैं, आप कितने अच्छे हैं, ऐसे कैसे कोई इतना अच्छा हो सकता है। आपकी पत्नी को मेरे जो ससुर जी है वो लेके चले गए और फिर भी आप इतने दयालु, आप इतने अच्छे क्यों हैं आप। और फिर वो राम जी से आशीर्वाद लेती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। तो राम जी का जो स्वभाव था, कोई भी जो उनके साथ मिलता रहता उनके प्यार में पड़ जाता, लगता इतना भी अच्छा कोई हो सकता है। इसलिए वो लक्ष्मणाचार्य बोल के रामानुजाचार्य के संप्रदाय में एक आचार्य हुए थे जिन्होंने रामायण को बहुत ही संक्षेप में बताया है। एक्चुअली रामायण के 24,000 श्लोक है, तो हमें पारायण करनी हो पूरी रामायण तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन लक्ष्मणाचार्य जो है उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में 108 श्लोक में ही पूरी रामायण को बता दिया है। तो उसमें वो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो बोलता है अगणित गुण गण भूषित रामा अवनी तन्या कामित रामा राक चंद्र सम आनन रामा पितृवाक्य आश्रित कानन रामा राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम। अगणित गुण गण भूषित राम, अगणित इतने सारे गुण है, काउंट नहीं कर सकते उतने गुण है श्री राम जी में, वो कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पे हनुमान जी की, हम लोग हनुमान जी की बात कर रहे थे, तो किस तरह से हनुमान जी के एसोसिएशन से विभीषण ये हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विभीषण राम जी का आश्रय लेते हैं और राम जी उन्हें अपना लेते हैं। जो भगवान के भक्तों का एसोसिएशन लेते हैं उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। एक बार एक इंसान था, बहुत ज़्यादा ही पापी था, उसको कोई किसी कार्य में, जप में, पूजा में कहीं मन नहीं लगता था। तो एक बार जो है नारद मुनि उसको मिलने गए थे कि भाई तुम भक्ति में आओ। तो नहीं नहीं कहाँ टाइम है, मेरा परिवार है, ये है वो है, मुझे कहाँ टाइम है। तो नारद मुनि ने दया करके बस एक ही बात बोली, बोले ठीक है तुमको कुछ भी करने का टाइम ना हो तो कम से कम तुलसी महारानी की सेवा किया करो, तुलसी को पानी दो, बस तुलसी की पूजा करो और तुलसी को जो है आप रक्षा करो। तो बोलते ठीक है मैं उतना कर सकता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनली जब उसका मरने का समय आ गया तो यमराज आ गया उसको लेने के लिए, लेकिन उसको बात याद आ गई नारद मुनि की कि भाई तुलसी तुम्हारी रक्षा कर सकती है। तो जैसे ही यमराज उसको लेने के लिए आए उसने क्या किया, तुलसी महारानी को जोर से पकड़ लिया। तो अब जैसे तुलसी महारानी को पकड़ लिया तो यमराज कुछ नहीं कर सकते जो तुलसी का आश्रय लेता है। तो यमराज उसको रिक्वेस्ट करते कि भाई थोड़ा सा तुम तुलसी को छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो बोलते जो बात करना है तुलसी के साथ रह के बात करूँगा, बोलो, तुलसी को तो नहीं छोड़ूंगा। अब यमराज इतनी मेहनत कर रहे, उसको समझा रहे, वो तुलसी को छोड़ नहीं रहा है। अब यमराज थक जाते, बोलते इसका टाइम हो गया, इसको जाना चाहिए, अभी इसका मरने का टाइम हो गया। फिर यमराज जाके ब्रह्मा को बुलाते, बोलते सृष्टि तो आपने की, आप समझाओ। सृष्टि किए हुए जीव बात नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी बोलते एक बार आओ, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बोलते जो बोलना बोलो, मैं तुलसी को नहीं छोड़ूंगा, तुलसी के साथ ही बात करो मेरे साथ, जो भी बात करनी है। अब ब्रह्मा जी बोलते मुझसे नहीं होता, वो शिव जी को बुलाते। शिव जी आते समझाते, बोलते एक बार तुलसी को छोड़ो, मैं तुमको कुछ कान में बताऊंगा। बोलते कान में बताओ, नाक में बताओ, आंख में बताओ, तुलसी के साथ ही बताओ, तुलसी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब ये तीनों तंग हो जाते, बोलते इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसको करे क्या। सोचते हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, जो है भगवान ही इसका स्क्रू ठीक कर सकते हैं। तो इसको बोलते भाई चलो तुमको भगवान के पास ले जाते, कुछ बात करनी है। बोलते ठीक है जहीं भी ले जाओ, मैं तो तुलसी के साथ ही आऊँगा। तो फिर पालकी अरेंज करते, वो पालकी में तुलसी को लेके बैठ जाता है, पालकी के अंदर में उसको वैकुंठ लेके जाते हैं। वहाँ विष्णुमूर्ति को बोलते देखिए ये बात नहीं सुन रहा है, एक बार अगर तुलसी को छोड़ दे तो इसको जाने का टाइम हो गया, यस टू गो, नरक में ही जाना है, बहुत पाप किए हैं। भगवान जोर जोर से हंस रहे हैं। अब ब्रह्मा शिव यमराज बोल रहे क्या आप हंस क्यों रहे हैं। तो भगवान बोलते भाई ये तो अब वैकुंठ आ गया, और एक बार जो वैकुंठ आ जाता है वो तो वापस नहीं जाता है, तो इसका तो काम हो गया, बस हो गया, अभी आप लोग जाओ अपना अपना काम करो, ये तो यहाँ सेटल हो गया। तो फिर इसने सोचा अरे तो तुलसी को पकड़ने की तो बहुत बेनिफिट है, डायरेक्ट वैकुंठ बिना कोई ये किए। तो बस इसलिए तो प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि सुबह और शाम क्या करो, तुलसी की पूजा करो। हमें तो किसी भक्त का आश्रय लेना है, हमारे तो तिलक में भी तुलसी महारानी है, हम तो तुलसी महारानी से, राधा रानी से, भक्तों की कृपा से ही भगवान को मिल सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, हमारी परंपरा है दासानुदासानुदासानुदासा, बस हम भगवान के भक्त के द्वारा उनके पास पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लव मात्र साधु संगत, हनुमान जी का थोड़ा सा संग मिला और विभीषण जी को राम जी के दर्शन हो गए। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम लंका के राजा बन गए। उसके बाद बोलते जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। भगवान यहाँ पे तुलसीदास, ये हनुमान चालीसा जो है तुलसीदास जी के द्वारा रचना की गई है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि वहाँ इतनी योजन दूर जो सूर्य है उसको एक फल समझ के तुम खुदे उसको मुँह में लेने के लिए। यहाँ पे इतना सुंदर कैलकुलेशन बताया गया है। तुलसीदास जी 15th सेंचुरी के रचयिता थे या भक्त थे, और उन दिनों में भी उन्होंने करेक्ट डिस्टेंस बता दिया अर्थ और सन के बीच में, जो अभी नासा वाले फाइंड आउट किए हैं तब वो लोग सरप्राइज हो जा रहे हैं कि इतने साल पहले हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने बता दिया द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ से जो वो खुदे थे सन के ऊपर में वो गोले को अंदर डालने के लिए, कितना डिस्टेंस वो अपने पोएम में बता देते। बोलते ना युग सहस्र, युग माने 12,000 साल, सहस्र माने 100, योजन माने 8 माइल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो 12,000 × 1,000 × 8 miles इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस जो अभी नासा बता रहा है बिटवीन अर्थ एंड सन। तो उन दिनों में तुलसीदास ने बता दिया कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सो हमारे शास्त्र अगर हम सही तरह से पढ़े तो उसमें हर एक प्रकार का ज्ञान दिया गया है। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांद गया चरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। बहुत सुंदर बात बोल रहे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी ने क्या किया, जब राम जी ने उनकी अंगूठी दी थी ना, अब हाथ में पकड़ेंगे तो असुर को मारते हुए कहीं गिर गई, एक हाथ में तो ऐसे भी गदा है, तो उन्होंने क्या किया मुख के अंदर में, भगवान ने जो अंगूठी दी है मुंह के अंदर में लेके वो खुदे है वहां जाने के लिए, लंका जाने के लिए। जो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दि लांज गए अचरज नाही। यहाँ पे तुलसीदास बोल रहे हैं, अगर वो इतने दूर खुदे है और अगर इतने स्पीड में लंका गए हैं तो उसमें अचरज क्या है, सरप्राइज क्या है? जिसके मुंह में भगवान की अंगूठी है वो तो कुछ भी कर सकता है, राइट? भगवान की चीजों में, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, उनसे संबंधित हर चीज की समान इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम में या भगवान की चीज़ों में, पैराफिलेलिया में या उनमें कोई डिफरेंस है, सब इक्वली पावरफुल है। तो यहाँ पे जो राम जी की मुद्रिका लेके वो उड़े थे तो उनको इतनी शक्ति मिली। इवन से आप जब किसी को बहुत प्यार करते हो तो उसकी संबंधित हर चीज को आप उतना ही प्रेम करते हो जैसे कि वो आपके सामने है। मुझे याद है, मैं प्रभुपाद जी की बायोग्राफी में एक बार पढ़ रही थी, ब्रह्मानंद प्रभु जो प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करते थे, उनके शिष्य, प्रभुपाद जी का एक बार एक दांत टूट गया था तो ब्रह्मानंद ने उसको बहुत सेव करके रखा था, तो उस दांत को अपने गले में चेन में पहनते थे वो, और बहुत दिनों तक उन्होंने पहना, रिसेंट तक। तो इंद्रद्युम्न महाराज एक बार उनको पूछ रहे थे कि तुम्हारे मरने के बाद फिर वो दांत मुझे तुम दे दोगे? तो ब्रह्मानंद प्रभु बोला, ऐसे होप भी मत रखो, मेरे साथ जाएगा वो दांत, जब मैं मर जाऊंगा मेरी समाधि जो होगी उसके साथ में वो दांत जाएगा। तो फिर वो जब गुजर गए तो उनके साथ में वो लेके चले गए। वो सो अटैच्ड और उसको उतना प्यार करते थे जैसे कि प्रभुपाद जी खुद उनके साथ हो। सो जब आप किसी से प्यार करते हो उनसे कनेक्टेड हर चीज आपको शक्ति देती है, ना इम्पोर्टेंट आपको फील होता है। इवन प्रभुपाद जी की किताबें जब 1967 में उतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ था, उन दिनों में बैक टू गॉड छोटी मैगजीन ही वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बड़ी बड़ी किताब डिस्ट्रीब्यूट करना तो वो लोग को आता ही नहीं था कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1967 में जब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक प्रिंटिंग हो गया और न्यूयॉर्क टेम्पल में अनलोड कर दिया ट्रक, वहाँ से उन्होंने सैन फ्रांसिस्को मंदिर में, यहाँ वहाँ सब जगह भेज दिया, लेकिन बुक सेल नहीं हो रही थी, ऐसी पड़ी थी, कैसे सेल करना उनको आता नहीं। 1971 में बुद्धिमंतक प्रभु और उनके साथ में और एक ब्रह्मचारी थे, वो दोनों एक पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन में गए गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए। तो जब पेट्रोल भरा रहे थे तो जो पेट्रोल भरता है उस आदमी से बात करने लगे, कृष्ण के बारे में बताने लगे, कृष्ण बुक दिखाने लगे, इसमें कृष्ण की स्टोरी है, कृष्ण भगवान है, ये है वो है। और जब पेट्रोल भरना हो गया तब उन्होंने जस्ट पूछा कि इंस्टेड ऑफ मनी क्या तुम ये किताब ले लोगे? उसने बोला, हाँ नो प्रॉब्लम, पैसे के बदले में ये किताब दे दो। तब उन्हें लगा, रहे दिस इज वेरी ग्रेट डिस्कवरी, उसका मतलब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं, किसी को भी जाओ थोड़ा सा समझाओ और हाथ में बुक दो, वो लोग ले लेंगे। तो धीरे धीरे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। अब वो इतना एक्सपर्ट हो गया, दिन में 100 बुक्स 200 बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। तो अभी दूसरे मंदिर जो थे वो सब इसको फोन करने लगे कि जरा ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार वर्कशॉप के लिए उनको भेजिए तो वो हमें भी सिखाए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन दिनों में वो दूसरे मंदिर में जाके बताते थे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है। लेकिन हालांकि वो इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रभुपाद से मिले नहीं थे, कभी देखा ही नहीं था प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद की किताब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक बार जब लॉस एंजलिस में श्री प्रभुपाद जी आए तो बुद्धिमंत प्रभु डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, और जब डिस्ट्रीब्यूशन करके शाम को वो मंदिर वापस आए तो टेम्पल प्रेसिडेंट केशव प्रभु ने बोला कि प्रभुपाद जी आए हुए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम इस्कॉन के जो है द बिग बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो बहुत खुश हो गया कि फाइनली जिनकी बुक्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं आज उनको देखूंगा मुखामुखी वो कैसे लगते हैं। तो जल्दी जल्दी गया, नहाया, लेकिन कुर्ता जो है वो सारे कुर्तों में से स्मेल आ रही है अंडरआर्म्स, तो इतना स्मेल कर रहा है, प्रभुपाद जी के सामने पहनना ठीक नहीं रहेगा। तो बिना कुर्ते के ही चला गया, सिर्फ धोती पहनकर वो प्रभुपाद जी के पास गया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हारा नाम बुद्धि मानता है, हाँ तुमने आज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। वो इतना शिवर हो रहा है प्रभुपाद जी के सामने, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला, हाँ प्रभुपाद 100 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वो कुछ नहीं बोल रहा है, टेम्पल प्रेसिडेंट बोल रहे हैं हाँ हाँ, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। फाइनली प्रभुपाद ने पूछा कि तुमने ऊपर में कुर्ता क्यों नहीं पहना, तुमको ठंडा नहीं लग रहा है, इट्स वेरी फ्रीजिंग। तब वो धीरे धीरे मुंह खोला कि नहीं प्रभुपाद, मेरे कुर्ते धोए हुए नहीं है तो स्मेल आ रही, इसलिए आपके सामने पहनना नहीं चाह रहा था। प्रभुपाद इमीडिएटली अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि मेरा एक कुर्ता लेके आओ और इसको दे दो। उसका सेक्रेटरी जाता है, प्रोपा जी का कुर्ता निकालता है अलमारी से और उसको दे देता है, वो साथ ही साथ में पहन लेता है। इतना खुश हो जाता है, प्रोपा जी का कुर्ता वो पहना हुआ है। उसके बाद बहुत सालों के बाद वो अपना प्रोपा जी का कुर्ता संभाल के रखता था। अब एक बार लॉस एंजलिस मंदिर में, लॉस एंजलिस सिटी के एयरपोर्ट में वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो वहाँ पे उसे कोई भक्त मिल गया जो पहले इस्कॉन में अच्छा से सेवा करता था। अब बुद्धिमंत प्रभु को देख के उसने बोला कि मैं इस्कॉन छोड़ के जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बुद्धिमंत प्रभु उसको समझाने लगे कि तुम इस्कॉन मत छोड़ो, मत जाओ, जो भी है प्रॉब्लम हो ये, हमें प्रभुपाद को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें इस संस्था में रहना चाहिए। इतना बोलने से भी वो मान नहीं रहा था। लास्ट में बुद्धिमंत ने बोला ठीक है, अगर तुम इस्कॉन में रह जाओगे तो मैं प्रभुपाद जी का कुर्ता तुमको दे दूंगा। तो बोला ठीक है रह जाऊंगा। तो फिर वो प्रभुपाद जी का कुर्ता उसको दे दिया। अब नाम नहीं बताना चाहिए, बट अब एज ऑफ नाउ वो डिवोटी इस्कॉन में बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहा है। तो उस दिन प्रभुपाद के कुर्ते की वजह से रुक गया था वो। और रिसेंटली 1990 में वृंदावन में बुद्धिमंत प्रभु का देहांत हो गया, द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इस्कॉन। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, इतना ध्यान से प्यार से एकदम मुंह में, और हनुमान जी को इतना एंकरेजमेंट फील हो रहा है कि यस आई कैन डू इट, बिकॉज भगवान की मुद्रिका जो वो हाथ में पहनते हैं वो मेरे पास है। उस एंथुजियाज्म से वो जा रहे हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो फिर वहाँ पे जाते हैं, दुर्गम काज बहुत बड़ी बड़ा काज है लेकिन इतनी सरलता से वो कर लेते हैं। फिर वहाँ पे जाते हैं सीता जी का, सीता जी को अप्रोच होने से पहले तो झाड़ के ऊपर में सारी राम जी की कथा बोलते हैं। जब राम जी की कथा, सीता माता वहाँ किसी को भी ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि कभी कभी यू नो मायावी रूप में ये लोग आते रहते थे, उसे अल्यूर करने की कोशिश करते रहते थे। तो अब डायरेक्टली अगर हनुमान उनके सामने आ जाएगा तो वो चीख देगी कि ये कौन है, फिर सब लोग उसको पकड़ लेंगे। तो हनुमान बहुत सो इंटेलिजेंट, बहुत कॉशियस थे। तो धीरे धीरे पहले राम जी के गुण गाना शुरू किया, राम जी कैसे है देखने में, राम जी और सीता जी का विवाह कैसे हुआ, पहली बार दोनों कहाँ मिले थे, और सीता जी राम जी को प्यार से बुलाती थी एक नाम से, जैसे कृपालू या एक नाम होता था, तो उस ऐसे करके धीरे धीरे वो जो है बोलना शुरू करते। और फिर सीता जी को बुलाते हैं माँ, तो तभी सीता जी कन्विंस हो जाती कि नहीं ये कोई भक्त ही है, क्योंकि वहाँ राक्षसों की जगह में उसको माँ कौन बुलाएगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर से वो बोलते हैं, जननी मैं राम दूत हनुमान, जननी माँ मैं राम का दूत हूँ। तो इमीडिएटली सीता जी समझ जाती है। फिर हनुमान सामने आता है और फिर हनुमान जी क्या करते हैं, प्रभु की जो मुद्रिका है, जो अंगूठी है, वो हाथ में रख के सीता जी को ऐसे देते हैं। जी ये भी बहुत सुंदर बात है, क्योंकि कभी कभी सटल वैष्णव बिहेवियर्स में हम गलती करते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं हम कभी भी उन्हें ऐसे चीज़ों को नहीं देना चाहिए, हमेशा ऐसे देना चाहिए और बड़े पहले लेते हैं। हमें कभी कभी जैसे कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम जब दे रहे हैं तो सबको हम ऐसे ऐसे करके दे देते हैं। एक्चुअली देने के सिस्टम होते हैं, जब हमसे कोई बड़ा होता है, सीनियर होता है, तो हम ऐसे देते हैं उनको चीज़ें। अगर प्रसाद भी देना है तो वो पहले लेंगे जितना चाहिए और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सटल मैनर्स जो है वैष्णव में होती है। तो हनुमान जी ऐसे करके नहीं देते सीता माता को, राइट, छूते नहीं। एक्चुअली जो वैष्णव किसी को छू के चीज़ें देना, ये भी एक बैड मैनर्स है, बहुत केयरफुल रहना है, बिना कारण के किसी को टच नहीं करते। फिर हनुमान जी ऐसे रखते हैं उसको और वो मुद्रिका को ऐसे रखते हैं, और फिर सीता जी उसे लेती है, और फिर सीता जी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जब पहली बार सीता राम का विवाह होने के बाद, जब वो पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं विवाह के बाद, तब सीता जी उन्हें ये गिफ्ट देती है राम जी को, ये अंगूठी। तब राम जी बोलते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं आया कुछ गिफ्ट लाना चाहिए, मैं तो भूल गया। ठीक है, मैं एक गिफ्ट तुमको दे सकता हूँ, मैं एक पत्नी व्रत रहूँगा, क्योंकि उन दिनों में राजा तो बहुत सारी शादियाँ करते थे। तो राम जी ने बोला कि मेरा ये गिफ्ट है कि मैं तुम्हारे सिवा सीता कभी किसी स्त्री को भी अपनी माँ की तरह ही देखूंगा। तो फिर सीता जी बहुत खुश हो जाती है। अब हनुमान जी बोलते हैं कि वे मुझे भी कुछ मैसेज दीजिए राम जी को, कैसे, जैसे आपको कंफर्म करने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, अब आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा कि मैं राम जी को कंफर्म बता सकूं कि मैं आपको ही मिला था। अब सीता जी बहुत सुंदर एक बात बताती है, बोलते हैं एक इंटीमेट पास टाइम है जो किसी को पता नहीं, सिर्फ हम दोनों को पता है, मैं आज तुमको बताती हूँ, तुम जाके राम जी को ये बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ही मिले थे। फिर सीता जी बताती है कि सीता जी क्योंकि बहुत सुंदर थी तो इंद्र के जो बेटे थे जयंत, वो सीता जी पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो सीता जी को छूना चाहते हैं, जाके तो नहीं छू सकते, तो वो क्या करते हैं, काकासुर एक काक पक्षी, कौवे के रूप में आते हैं, और सीता जी जब बैठी हुई रहती है, राम जी का सिर सीता जी के गोद में है, वन में है, दोनों झाड़ के नीचे बैठे हैं, और ये काकासुर्य जो काक असुर जो है मतलब जयंत है, वो एक कौवे के रूप में आता है और सीता जी को छूता है। अब छूता ही नहीं है, वो उस तरह से सीता जी के छाती पे जो है छेद बना देता है कि थोड़ा सा रक्त बाहर आ जाता है। अब सीता जी को दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं हिलूंगी तो राम जी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेरे गोद में है वो सो रहे हैं, तो वो हिलती नहीं है। तो सीता जी की छाती से जब रक्त की बूंदें राम जी के सिर पे गिरती है, तब वो उठ जाते हैं। उड़ते तो देखते हैं कि ये क्या है, तो देखते हैं कौवा डिस्टर्ब कर रहा है, तो राम जी इतना गुस्सा हो जाते हैं, वो साथ ही साथ में वहाँ पे जो घास पड़ा रहता है एक घास को उठाते हैं और उसको ब्रह्मास्त्र बना के जयंत पे फेंक देते। अब सीता जी इमीडिएटली उनको पकड़ देगी, नहीं माफ़ कर दो बेटा है, गलती हो गया, क्योंकि वो तो माँ है, उसके लिए तो सब बेटे ही है, बेटा है माफ़ कर दो उसको। फिर राम जी बोलते लेकिन अब तो मैंने ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया, अब मैं क्या करूँ। तो सीता जी बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन माफ़ कर दो, गलती है उसको, उसको क्या पता, बच्चे हैं उनको पता नहीं क्या करना चाहिए। तो फिर राम जी बोलते ठीक है, अब मैं वापस तो नहीं ले सकता, ठीक है उसको मारेगा नहीं, जाके उसकी आँख को फोड़ के आ जाएगा। तो फिर वो जो घास की जो ये है तृण है, वो जाके उसके जयंत के एक आँख को फोड़ के वापस आ जाता है। अगर आप रामायण में भी देखें, जहाँ जहाँ सीता जी राम जी के साथ है वहाँ वहाँ कोई मरा नहीं है, वो हमेशा बचा देती है। अगर आप देखो सूर्पंखा का भी जब ये वृत्तांत होता है, जिस तरह से लक्ष्मण का गुस्सा है, वो तो एक मिनट में सूर्पंखा को मार ही देगा, लेकिन जहाँ पे सीता माता होती है वहाँ पे मार नहीं सकते, वो पनिशमेंट कम हो जाता है। मारने के बदले में क्या करता है, सिर्फ उसके नाक और कान को काट देता है, जहाँ जहाँ सीता। इसलिए तो दंडकारण्य में जब 14,000 राक्षसों को मारा, तब सीता जी को गुफा में रख के आए थे राम जी, और तुम पास में खड़ा रहोगे तो किसी को मारने ही नहीं दोगे, इसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, और सीता जी को गुफा में रख के आए थे तभी राक्षस को मार पाए थे। इवन रावण का भी, सीता जी नहीं थे इसलिए रावण मर सका, अगर सीता जी उस मोमेंट में वहाँ होती तो रावण को भी क्षमा कर देती, लेकिन छोड़ दो अब तो मैं वापस आ गई ना, रावण को क्यों मारना। सीता जी हमेशा माफ़ कर देती, सीता जी में बहुत ज़्यादा दया है, बहुत ज़्यादा दयालु, राम जी से भी ज़्यादा दयालु सीता जी है। तो इस तरह से वो सीता जी ये सीक्रेट कथा बताती है कि तुम अगर जाके राम जी को ये बताओगे तो उनको पक्का विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझे मिले थे। और फिर हनुमान जी पूछते हैं कि माँ मैं कैसे, मैं क्या बताऊँ, आप कैसी है, मैं क्या खबर दूँ आपका सिचुएशन। तो बहुत सुंदर बात सीता माता बोलती है, प्रभु जी अक्सर बात ये क्लास में बोलते रहते हैं, सुनो हनुमंता विपत्ति प्रभु सोए, जगत में सुमिरन भजन ना होए। सीता माता बोलती विपदा ये नहीं है हनुमान, विपदा तो तब है जब आप भगवान का नाम भूल जाते हो, बाकी तो जिंदगी में परिस्थिति आती रहती है, कभी अच्छी परिस्थिति होती है कभी बुरी परिस्थिति होती है, परिस्थिति में कुछ नहीं, जिस दिन भगवान का नाम लेना भूल जाओगे वो विपदा है, वो रियल प्रॉब्लम है। मैं बहुत बार ये कथा बताती हूँ ना, कैसे अनंत आचार्य बालाजी की सेवा करते थे, उनके लिए माला वगैरह बनाते थे, तो जो गार्डन होता है फ्लावर्स का, उसमें जाके फूल लेके आना पड़ता है रोज़। तो एक दिन फूल लेने जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो सांप काट लेता है, वो परवाह नहीं करता, वो अपना ही सेवा में बिजी रहता है। तो भगवान उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि अनंत आचार्य मैंने सुना कि आज सुबह तुमको सांप काट लिया। तो अनंत आचार्य हंसते हैं, बोलता है स्वामी ये सांप क्या बड़ा बात है, ये तो बहुत छोटा सांप है, मेरे हृदय में जो बड़ा सांप है ना, मोह का माया का ममता का, ये बहुत बड़ा सांप है, क्योंकि बाहरी सांप मुझे काटेगा तो क्या होगा, ये शरीर छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ के मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, रोज़ पुष्करिणी में नहाता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, वैकुंठ में जाके क्या करूँगा, वहाँ भी मुझे यही काम करना है, मुझे नहाना है विरजा में और आपकी सेवा करना है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ भी आपकी सेवा है वहाँ भी यहाँ आपकी सेवा करना है, लेकिन ये जो अंदर का मेरा सांप बैठा हुआ है ना, मोह माया, ये जो मुझे बार बार काटता है ना, इसके काटने की वजह से जन्म जन्म के बाद में यहीं रह जाऊँगा, आपके लोक में वापस नहीं आ पाऊँगा, इस सांप से मुझे कोई बचाए। तो हमारे हृदय में भी ये सांप बैठा है, इसलिए तो जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म हम इस किसी न किसी योनियों में घूम रहे हैं। जिस दिन ये सांप मर जाएगा उस दिन हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो सीता जी बोलती है ये क्या विपदा है, विपदा तो तभी है जब भगवान का नाम भूल जाएंगे। और सीता जी वहाँ भगवान का नाम नहीं भूली थी, वो तो हर पल वहाँ पे, जब हनुमान जी गए थे उसको मिलने के लिए तभी भी सीता जी क्या कर रही थी, फ्लावर्स की जो पंखड़ियाँ होती है उससे राम का नाम बना रही थी और लिख रही थी राम राम। और जहाँ सीता जी बैठी थी उसके आसपास में झाड़ों में से, फूल में से, लीव्स में से, हर जगह से राम राम राम, बस यही नाम बाहर में आ रहा। तो जहाँ भगवान का नाम नाम है वहाँ कोई विपदा नहीं है। तो यहाँ पे सीता जी को प्रभु जी की प्रभु की मुद्रिका देते हैं और सीता जी से बात करते हैं, सीता जी से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, सारे कल्चर जो है ठीक से फॉलो करते हैं, उनसे मीठी वाणी में बोलते हैं, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सी अगर सीता जी ने हनुमान को एक्सेस दिया उनसे बात करने का जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाणी, वो क्या बोल रहे हैं, राइट? सीता जी ने कैसे एक्सेस किया, एसेस किया, सीता जी ने कैसे एसेस किया कि ये भक्त है कि नहीं है? मुंह से नहीं ही, वाणी से। वाणी कितनी इम्पोर्टेंट है, आप क्या बोलते हो उससे पता चलता है आप कैसे भक्त हो। दिखने में शायद आपका तिलक बहुत सुंदर हो, शायद आपकी कंठी, आजकल तो भक्त सारे इतने सारे कंठी पहन लेते हैं, 3 राउंड 5 राउंड, फिर राधे राधे, फिर इतना माला, उतना, उससे भक्त नहीं हो सकते आप। आप कैसा तिलक लगाते हो, कितनी कंठी पहनते हो, कैसा कुर्ता पहनते हो, कितने सारे आप चीज़ें लगा देते हो अपने यार, कितना बड़ा बड़ा तिलक लगाते हो, आपकी वाणी कैसी है? जब आप मुंह खोलते हो तो आप क्या बोलते हो? जब आप मुंह खोलते हो तो आप मेटेरियलिस्टिक बातें करते हो या आप भगवान की बातें करते हो? उससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह के भक्त है। बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, स्पेशली जब हम प्रचारक बनना चाहते हैं प्रभुपाद जी के मिशन में, हमारी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। जब हम दूसरों से, हम जब दूसरों को भक्त बनाना चाहते हैं, कितना दिन उनको खीर और पायसम खिला के भक्ति में रखेंगे? लाने में शुरू में किसी को प्रसाद से आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि आओ इस्कॉन में अच्छा प्रसाद है, प्रसाद लो आओ, कितना दिन उसको खाना खिला या प्रसाद खिला के भक्त बनाओगे, भक्त रखोगे? भक्ति में तो वो तभी रहेगा जब देखेगा कि जो उनको भक्ति में लाए हैं उनके गुण कैसे हैं, उनका सदाचार कैसा है, उनका आचार कैसा है, उनके क्वालिटीज से अट्रैक्ट होके वे भक्ति में रहेंगे। टेम्परेरी चीज़ों से अट्रैक्ट करके कितने दिन रहेंगे, राइट? बहुत ज़रूरी है कि जब हम भगवान का मैसेज, सी हनुमान जी, शायद हनुमान जी प्योर डिवोटी है, लेकिन अगर उन्हें सही से अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता तो वो सीता जी को मैसेज नहीं दे पाते। कभी कभी ऐसा होता है, शायद हम बहुत अच्छे भक्त हो लेकिन हमें नहीं आता किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना, और फिर हम प्रभुपाद जी के मिशन को दूसरों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं और फिर उनको हम पे विश्वास नहीं रहता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास नहीं रहता है। हम, हो सकता है हम अच्छे भक्त हैं, हमें कोई मन में कुछ नहीं है, लेकिन हमें नहीं आता कैसे बोलना, हमें नहीं आता कैसे प्रेजेंट करना। बोलने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि व्यास आसन में देख के लेक्चर देने की बात नहीं हो रही यहाँ पे या क्लास देने की बात, हमारा व्यवहार, कभी कभी हमें नहीं आता कैसे बात करना, लेकिन हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम प्रभुपाद जी की इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से आप शादी करके जब कोई लड़की जाती है किसी के घर में तो बोलते देखो अच्छे से बिहेव करना, हमारा नाम है इसका सोसाइटी में, इन फलाना फलाना इसकी बहू आई है, मतलब लोगों को लगना चाहिए अरे, उसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन में हम जिसको बिलोंग करते हैं प्रभुपाद जी को, उसके अनुसार हमारी वाणी, हमारा प्रवर्तन होना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए। परस्पर हम भक्तों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, टेक इट इजीली। तो आगे बढ़ते हैं, राम दुवारे तुम रखवारे हो, तन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, द्वारे माने द्वार, राम जी के द्वार के रखवाले तुम हो, तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई राम जी को नहीं मिल सकता, और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपकी आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता है, और आपकी शरण में जो आते हैं उसे सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसका डरना। इतने सुंदर बात कही, अगर भगवान को मिलना है तो भगवान के रक्षक हैं हनुमान जी। हम देखते हैं रामायण में लीला आती है कैसे रात को जब जो युद्ध चल रहा होता है, राम लक्ष्मण जब सो जाते हैं तो अहिरावण जो पाताल में रहता है, रावण का भाई, वो राम और लक्ष्मण को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें नीचे लेके चले जाते हैं और उनको माता को बलि देने के लिए तैयार करते हैं उनको, फिर हनुमान जी को जब ये बात पता चलती है तो फिर वो पाताल लोक में जाते हैं, वहाँ पे ही रावण को मारते हैं और फिर राम जी और लक्ष्मण जी को वापस लेके आ जाते हैं। तो हमें अगर राम जी से एक्सेस चाहिए तो हमें हनुमान जी के द्वारा ही अप्रोच होना चाहिए। हनुमान जी राम जी के बहुत प्रिय भक्त हैं। एक बार एक भक्त राम जी के कमरे से बाहर आ रहा था, बहुत खुश नाचता हुआ। तो हनुमान जी ने पूछा, अयोध्या की बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? तो भक्त ने बोला कि तुमको पता है राम जी एक किताब मेंटेन करते हैं, जो भक्त हमेशा 24 घंटा राम जी को याद करते हैं वो भक्तों का नाम उस किताब में लिखा हुआ है और मेरा नाम उस किताब में है, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। तो हनुमान जी भी भागते सीधा अंदर में, वो किताब को लेते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं, और हनुमान जी ढूंढने लगते ए बी सी डी सब क्या बोलते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो गया, एच में आ गया नाम नहीं है, जेड तक चले गए नाम नहीं है। बहुत दुखी होते हुए उस दिन जब प्रसाद लेते हैं तब राम जी पूछते हैं कि हनुमान तुम आज बहुत दुखी लग रहे हो। बोलते मैं बोल देता हूँ, मेरे मन में ऐसी बात रहती नहीं, मैं बता ही देता हूँ मैं क्यों दुखी हूँ। मैंने वो किताब देखी जिसमें आप भक्तों का नाम लिख के रखते हो, जो आपको हमेशा याद करते हो, और उसमें मेरा नाम नहीं है। तो राम जी हंसने लगते हैं, बोलते नहीं नहीं तुमने देखा नहीं, उसके पास में और एक किताब थी। तो बोलती और एक किताब क्या? तो उसमें मैंने उनके नाम लिखे हैं जिसको मैं 24 घंटा याद करता हूँ, और उसमें तुम्हारा नाम सबसे पहले है। हनुमान जी इतने खुश हो जाते हैं, ओ अच्छा तो मेरा नाम उस किताब में है। तो हनुमान जी जो है राम जी के बहुत बहुत प्रिय भक्त है, राम जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो अगर हमें इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव भजन में लिखते हैं ना, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकति आजे, बोलते वैष्णव ठाकुर कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारे है कृष्ण, तुम चाहो तो दे सकते हो। अमितो कंगाला कृष्ण कृष्णा बोले दैतव पाछे पाछे, मैं तो भिखारी हूँ कृष्ण कृष्ण बोल के तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, कृष्ण तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो। एंड ये बात सच है, हम तो देखते हैं ना प्रभुपाद जी के जीवन में, ऐसे ही जो शराब पीता है अभद्र स्त्री संग सारे पाप करने वाले भी प्रभुपाद जब चाहते हैं उनको एक मिनट में भक्त, एक मिनट में, बस सरप्राइजिंग। एक कथा मैं आपको बता रही थी ना, कैसे आई थिंक एम्स्टरडैम में या कहीं संडे शाम का क्लास है, प्रभुपाद जी क्लास दे रहे हैं, कोई नया आदमी आया है पीछे बैठा, क्लास सुना, क्लास के एंड में, वो प्रभुपाद जी को जानता नहीं है, पहली बार उसने प्रभुपाद जी को देखा, क्लास सुना, क्लास के एंड में आता है प्रभुपाद जी के पास और बोलता है कि माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू यू, बस मेरी लाइफ मेरा जीवन आपके लिए, आप जो बोलो मैं करूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। प्रभुपाद ने बोला ठीक है फिर तुम एक काम करो, कोई जगह का नाम बोलते, बोलते वहाँ जाके सेंटर खोलो, इसको कुछ भी पता नहीं है, तुम वहाँ जाओ और सेंटर खोलो। कब जाना है? कल। ठीक है डन। वो कहाँ अपना सामान पैक किया, चला गया वहाँ पे सेंटर खोल दिया। अब विश्वास नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी का इतना पावर है, वो चाहे तो किसी को भी एक मिनट में प्रचारक बना सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी की लीलामृत में आता है कैसे प्रभुपाद जी ट्रेन में ग्वालियर से पास होते रहते हैं और उनके जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है वो प्रभुपाद जी को बता रहे, प्रभुपाद जी आपको पता है ग्वालियर में कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, यहाँ पे कितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इमीडिएटली पूछते हैं, अच्छा ग्वालियर में इस्कॉन का सेंटर है क्या? हाँ नहीं है प्रभुपाद। अच्छा ठीक है तो फिर तुम उतर जाओ, ग्वालियर में सेंटर खोलो। मैं? हाँ तुम, अभी का अभी। जैसे ग्वालियर में स्टेशन रुका, ये बेचारा भक्त सोच रहा था मैंने बोला ही क्यों इतना ज़्यादा ग्वालियर के बारे में, मुझे क्या पता मुझे ही उतार देंगे ट्रेन में से। बोला अभी उतरो, 300 रुपये दिया प्रभुपाद जी ने उसके हाथ में, 300 रुपीज़, और सामान लिया। बोला ठीक है मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा, सेंटर रेडी रखना, ठीक है हो गया, मैं एक साल के बाद आऊँगा, वहाँ पर सेंटर शुरू कर देना। कर दिया। आप अगर कोई भी इस्कॉन सेंटर की कहानी सुनो तो अद्भुत कहानी लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है कैसे बना देता है? प्रभुपाद जी की ये कृपा है। तो ये बता रहे हैं ना कि जिस पे हनुमान जी की कृपा हो बहुत सरलता से राम की सेवा में लग सकता है। सेवा मिलना एक प्रिविलेज है, हम सेवा को बहुत सस्ता सोचते हैं, सेवा भगवान का मिलना मतलब इट्स ए प्रिविलेज। पता नहीं कितने जन्म के पुण्य करते हैं तब जाके हमें भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, और हम सोचते हैं कि हमें ही क्यों बोलते हैं सेवा, और कोई भक्त नहीं है क्या, हमेशा मुझे मैं ही मिलती हूँ क्या सेवा? अरे तुमने किए हैं पुण्य कि तुमको हमेशा ये सेवा करने का चांस मिल रहा है। तो यहाँ पे बोलते हो तन आज्ञा बिन पैसा रे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जब तुम किसी की रक्षा करते हो तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आई, मैं बताती हूँ। एक बार सुकांत नाम का काशी का एक राजा था। अब उसने अपने राज्य में बहुत अच्छा यज्ञ किया। यज्ञ में बहुत सारे साधु संत आए थे, तो विश्वामित्र मुनि आए थे, वशिष्ठ मुनि आए थे, बहुत सारे मुनि आए थे, नारद मुनि भी आए थे वहाँ पे। तो जब यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ के बाद क्या करते हैं, आप पूर्णाहुति करते हैं, उसके बाद में सारे साधुओं को जाके आप नमस्कार करते हो और उनको जाके आप जो है दान दक्षिणा देते हो। अब नारद मुनि ने जाके क्या किया, ये आई थिंक सुकांत है या शकुंत है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो शकुंत होगा, उसके कान में जाके बोला कि देखो सबसे पहले वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करना, विश्वामित्र को बाद में करना, क्योंकि विश्वामित्र पहले गृहस्थ थे, वो थोड़े से हायर है, ये थोड़े से लोअर है, पहले उनको प्रणाम करना बाद में इनको। बोला ठीक है। तो यज्ञ हो गया, पहले वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया, बाद में विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया, सब हो गया। अब नारद मुनि जो है एक दो दिन के बाद विश्वामित्र के पास गए, आपने ऑब्जर्व किया पहले वशिष्ठ को प्रणाम किया, आपको बाद में प्रणाम किया। विश्वामित्र बोला हाँ करेक्ट है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। फिर नारद मुनि बोला वही तो, आप बहुत भोले हो, आपको समझ में नहीं आता, आपको पता है पहले वशिष्ठ को क्यों प्रणाम किया, आपको क्यों प्रणाम नहीं किया। हाँ क्यों नहीं किया मुझे प्रणाम, क्योंकि वो आपसे सीनियर है। तो अब विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि ऐसा तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब इक्वल है, जो भी भगवान के भक्त है, ये बड़ा है, ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये तो गलत बात है। अब वो इतना गुस्सा होते हैं सीधा राम जी के पास चले जाते हैं, और फिर राम जी के पास जाके बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए। राम जी बोलते हैं राज्य आपका है, बोलिए मुनिवर आपको क्या चाहिए। बोला तुम एक काम करो, काशी के राज को मार डालो, उसको मार डालो, क्योंकि उसने मेरा डिसरेस्पेक्ट किया है। तो राम जी ने बोला ठीक है गुरु जी, आप जो बोलते वही सही है, तो ठीक है मैं तैयार होता हूँ। तो राम जी अपनी आर्मी को रेडी करते, बोलते चलो काशी के ऊपर में हमें दावा बोलना है, काशी राज को हमें मार देना है, गुरु की आज्ञा है। अब नारद मुनि जाते हैं काशी राजा के पास में, उसको जाके बोलता है तुमको पता है राम जी तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। बोलता अच्छा क्यों, मैंने क्या किया। बोलता वो मुझे क्या पता तुमने क्या किया, किया होगा तुमने कुछ नहीं, तो राम जी तुमको मारने के लिए क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। बोलता नहीं, हो तुम विश्वामित्र को डिसरेस्पेक्ट किए ना। तो ये काशी का राज बोलता लेकिन आपने ही बोला था ना। नारद मुनि बोलता मुझे याद नहीं है क्या बोला था, एनीवे तुमको एक हेल्प कर सकता हूँ, तुम जाके हनुमान जी की मदद मांगो, बोल के नारद मुनि चले जाते हैं। काशी का राजा सोचता है ये नारद मुनि तो बड़े बदमाश है, वो ही बोले थे पहले मुझे करने के लिए, अब मुझे अच्छा फंसा दिया, अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा। तो बोला ठीक है हनुमान जी के पास जाता हूँ। तो जाते हैं हनुमान जी के पास में। अब हनुमान जी जहाँ पे रहते हैं उनकी मदर जो है तो जंगल में रहते हैं, उनका घर तो किष्किंधा में। तो अब जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि हनुमान जी घर पे नहीं है। तो हनुमान जी की मदर जो वहाँ पे रहती है गुफा के अंदर में, वो गुफा के बाहर बैठ के हनुमान जी का इंतजार करते हैं। अब सोच सोच के उनको रोना आ रहा है कि राम जी आएंगे मुझे मार डालेंगे, मेरी छोटी सी बात के लिए मेरे को इतना बड़ा पनिशमेंट, और जोर जोर से रोने लगे। अब जब वो रोने लगे तो अंजना माता बाहर आई गुफा से, बोले कौन इतना रो रहा है। पता नहीं मेरा नाम ये है और मैं काशी से आया हूँ, मुझे हनुमान जी से बात करनी है। तो बोलते तुम पहले रोना तो बंद करो। बोलते कैसे रोना बंद करूँ, मेरे जान पे बनी है। अंजना जो है हनुमान जी की मदर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मेरा बेटी तुम बेटा तुम्हारी रक्षा करेगा, और मैं एक बार वादा कर दिया मतलब वादा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत खुश हो जाता है। तब तक हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे हनुमान जी आते हैं वैसे ही अंजना बोलती है कि मैंने ऐसे इसको वादा किया है, तुम इसकी रक्षा करो। हनुमान जी बोलते कोई बात नहीं मदर, आप जैसे बोलोगे वैसे। हनुमान जी उसको पूछते भाई तुम्हारी किससे रक्षा करनी है, बोलो किससे रक्षा करनी है, अभी खत्म कर देते हैं। बोलते राम जी से। हाँ राम जी से मैं कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ राम जी से। बोलते मुझे पता नहीं आपकी मदर ने अभी प्रॉमिस किया है। अब हनुमान जी सोचते अब मैं करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पे मदर को प्रॉमिस दे दिया मैंने, राम जी के साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर हनुमान जी बोलते ठीक है चलो मेरे साथ, मैं कुछ आइडिया करता हूँ, पहले चलो मेरे साथ। तो उसका हाथ पकड़ते हैं और दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहाड़ के ऊपर में इसको बिठा देते हैं, बिठा के इसको क्या करते हैं ना, हनुमान जी की जो पूंछ होती है वो पूंछ से जो उसको पूरा कवर कर देते हैं। बोलते आप क्या कर रहे हो। बोलते नहीं तुमको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलते हैं फिर हनुमान जी उससे बोलते हैं कि अब तुम एक काम करो, अंदर से जो है दोनों हाथ जोड़ के आँख बंद करके राम का नाम बोलो। अभी राजा बोलते तुम पागल है कि मेरे को डर लग रहा है राम राम बोलने से, वो कब आ जाएंगे तो मैं उसको बुलाऊँ कि आओ आओ मुझे मारो बोल के। अब हनुमान जी बोलते देखो भैया मैं तुमको अच्छा से समझा रहा हूँ, भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कौन बचाए, कौन बचाए, तो मुझे आप मारने के लिए लेके आए इधर। बोलते राम जी से सिर्फ राम जी ही बचा सकते हैं, तुम सिर्फ राम का नाम लो उसके सिवा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब ये डरते डरते राम, फिर डर रहा है कि आ गए तो राम 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 कर रहा है, हनुमान जी उसके पास में बैठ गए हैं। अब यहाँ पे राम जी चले जाते हैं काशी, यहाँ पे देखते काशी में तो वो है ही नहीं वो राजा, तो उसको सब जगह ढूंढते ढूंढते देखते अरे पहाड़ के ऊपर में चला गया, पहाड़ के ऊपर में है बोल के एक सैनिक बता देता है। तो फिर राम जी ऊपर आ जाते हैं, एकदम तैयार हो जाते हैं, बाण निकालते हैं, बोलते हनुमान तुम बीच में मत पड़ो, यहाँ से तुम साइड में जाओ और मैं इसको मारूंगा। तो हनुमान जी बोलते कंटिन्यू, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू करिए। अंदर से ये काशी का राजा बोलता है मैं अननेसेसरी इसके ऊपर विश्वास किया, ये बोलता है कंटिन्यू, बोल भी नहीं रहे एक बार कि इसको छोड़ दो माफी बोलते कंटिन्यू, बोलते ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये राम भक्त है ना, राम का ही साइड देगा, तो राम 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 कर रहा है। अब राम जी एक बाय एक बाण डाल रहे हैं और राम जी के बाण जो है वापस राम जी को आ रहे हैं। अब राम जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, हनुमान जी जोर जोर से हंस रहे हैं। राम जी बोले ये तुम्हारी क्या माया है, हनुमान जी बोले मेरी कोई माया नहीं है, आप से भी आपका नाम ज्यादा पावरफुल है, आपका नाम वो ले रहा है, सारे बाण वापिस आ रहे तो मेरी क्या गलती है इसमें। और ये जब राम जी कोशिश करते जा रहे एक बाण के बाद दूसरा बाण के बाद, तभी वहां पे विश्वामित्र आ जाते हैं। जैसे विश्वामित्र आते हैं वैसे हनुमान क्या करते हैं, वो जो पूछो का ये सिक्योरिटी ये जो बनाया था उसको निकाल देते हैं और इसको राजा को बोलते कि भागो जाओ, विश्वामित्र को प्रणाम करो। अब ये काशी राजा भागते विश्वामित्र के पैर पकड़ लेते हैं, मुझे माफ कर दो। अब जो संत होते हैं भक्त होते हैं वो तो एक मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, एक मिनट में ठंडा भी हो जाता है, ये नेचर ऑफ ए डिवोटी, गुस्सा भी एक मिनट में, शांति भी एक मिनट, अरे छोड़ो मैं भी क्या छोटा बात के लिए इतना बड़ा इश्यू बना दिया। वो राम जी को बोला छोड़ दो इसको, माफ कर दो। फिर विश्वामित्र उसको समझाते हैं, तब वहाँ नारद मुनि भी आ जाते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं देखो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करो, सबको इक्वली तुम्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए। फिर वो सुकांत राजा बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं, इन्होंने ही बोला था, नारद इनका ही बहा, वो ही मुझे ऐसा सिखाए थे। फिर सब ठाकुर जी नारद मुनि के पास नारद मुनि के सामने देखते हैं, बोलते हैं नारद तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर नारद बोले मेरी कोई गलती नहीं, मैं सिर्फ प्रूव करना चाह रहा था कि राम का नाम जो है वो राम से ग्रेट है, बस बाकी और कोई ये नहीं है। कुछ दिन पहले अयोध्या में चर्चा हो रही थी कि कौन ग्रेट है, तुम बस मैं इसको प्रूव करना चाहता था। तो मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, बचपन में हम इसको बहुत गाते थे मेरे बहन के साथ। कृष्णा वॉन्ट्स टू सेव यू, नो वन कैन किल यू, इफ कृष्णा वॉन्ट्स टू किल यू नो वन कैन सेव यू, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। हम इसको बहुत ज़्यादा दोहराते थे। ऑफकोर्स मेरी जो सिस्टर है वो इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करती, जब हम स्कूल जाते थे तो रोड क्रॉस करना है तो वो एकदम चली जाती थी, तो मैं उसको बोलती थी कि अरे यू नो गाड़ियाँ आ रही है, और उसका ही अपना ही स्टाइल था, मतलब वो जब रोड क्रॉस करेगी तो वो गाड़ी को बोलेगी रुको, और फिर वो तो मैं बोलती थी ये क्या करी, तो फिर बोलते मारे कृष्णा राखे के, तो मैं मम्मी को जाके कंप्लेन करती थी कि रोज़ ऐसा करती, मैं इसके साथ स्कूल नहीं जाऊँगी, मुझे इसको प्रोटेक्ट करते करते चलना पड़ता है क्योंकि वो तो सब जगह गाड़ी को ऐसा करके भगवान का नाम लेके चली जाती है, ऐसे कैसे हो। तो उसका नाजायज फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तो जब हम छोटे थे तो हम हर चीज़ की जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो जो भगवान के भक्त जिसकी रक्षा करे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है, और जो जिसको भगवान ही छोड़ दे उसका क्या। जैसे कहानी आती है ना रामायण में, कैसे राम जी का नाम लिखते लिखते वो पत्थर देते हैं तो पत्थर तैरने लगते हैं और लंका के जाने के लिए पुल बन जाता है, और राम जी सोचते हैं रात को कि ये कैसे हो रहा है, मेरे नाम में इतना पावर है क्या। तो राम जी भी जो है रात को जाते हैं छुपते हुए, कोई देख तो नहीं रहा है, और जाके एक पत्थर को लेते हैं, उस पर राम का नाम लिखते हैं और उस पत्थर को छोड़ देते हैं, लेकिन वो पत्थर डूब जाता है। तो राम जी सोचते हैं कि ये क्या हुआ, क्या गलती हो गई। पीछे से हनुमान जी हंसते हुए आते हैं ताली मारते हुए, तो राम जी बोलते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ठाकुर जी जिसको आपने त्याग कर दिया उसको कौन बचा सकता है, जिसको आपने छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। तो कृष्णा वॉन्ट्स टू किल यू, नो वन कैन सेव यू। यहाँ पे भगवान को सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का उनको डरना। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। आपन तेज सुम्हारो आपे तीनों लोक हाथ ते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोलते कि आपका तेज तीनों लोक में बहुत ही आप जो है फेमस है, आपकी चर्चा सब लोगों में है, और आपके तीनों लोक आपकी शक्ति से आपके नाम से कांपते हैं, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहाँ आपका नाम लेते हैं वहाँ पे कोई भूत पिशाच आते नहीं है। महावीर, आप भगवान हनुमान जी को बोले आप महावीर है जब नाम सुनावे, आपका नाम लेने से हमें हर टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है। हनुमान जी की बहुत ज़्यादा शक्ति थी, शारीरिक मानसिक, भगवान के भक्त थे, बहुत हृष्ट पुष्ट थे। महाभारत में भी वो कथा आती है कैसे जब पांडव वनवास में थे और अर्जुन जाते हैं इंद्रलोक में, ऊपर देवलोक में, स्वर्गलोक में जाते हैं इंद्र से बाण लेने के लिए, तो उस टाइम पे द्रौपदी भीम को बोलती है, एक पर्टिकुलर फ्लावर जो है तैरते तैरते पानी में यहाँ तक आ जाता है, और द्रौपदी उसका स्मेल देखती है, बोलती इतना अच्छा सुगंध है, मुझे तो ये फ्लावर चाहिए। सौगंधिका पुष्प बोलते हैं, मतलब लोटस फ्लावर जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ है, तो ऐसा फ्लावर तो पहले मैंने कभी देखा नहीं था, ना हस्तिनापुर में देखा है ना इंद्रप्रस्थ में देखा है, मुझे तो ये फ्लावर चाहिए। तो फिर भीम जो है उस फ्लावर को खोजते खोजते कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, बद्रिकाश्रम तक पहुँच जाते हैं, उस सुगंध को कहाँ से वो सुगंध आ रही है फॉलो करते करते। और फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा वानर बैठा रहता है और उसकी पूंछ जो है लंबी सी फैला के, और फिर भीम उसको बोलते कि आप काइंडली हटिए मुझे जाना है, बता कि मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरी पूंछ को मैं उठा नहीं सकता, तुम ही उठा दो। और फिर भीम कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता, फिर भीम बोलता है कि पक्का आप हनुमान है, कि हनुमान ही मेरे से और ज़्यादा शक्ति, मतलब इस दुनिया में एक ही है जो है हनुमान, तो पक्का आप हनुमान जी हैं, आप मुझे आप दर्शन दीजिए। फिर हनुमान जी उसे दर्शन देते हैं, उसे पता बताते हैं कहाँ वो फ्लावर मिलेंगे, और फिर हनुमान जी भीम को पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको एक आशीर्वाद मतलब एक बूंद दूंगा या वर दूंगा, तुमको क्या चाहिए। तो भीम बोलता है कि मुझे एक ही चीज़ चाहिए, जब मेरा भाई अर्जुन अगर आगे चल के कभी युद्ध हुआ तो मेरे भाई अर्जुन का जो रथ है उसके ऊपर का जो फ्लैग है झंडा, उसके ऊपर में आप प्रत्यक्ष बैठेंगे और आप हुंकार देंगे, मतलब सो सामने जो एनिमीज है शत्रु है वो आपकी आवाज़ से जो है डर जाएंगे। तो हनुमान जी ने वादा रखा और पूरा किया, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो अर्जुन के रथ के ऊपर में थे और वो इतना जोर से हुंकार करते थे कि आधे सैनिक तो हार्ट अटैक से ही मर जाते थे उस आवाज़ से, इतना डर लगता था, आधे तो उसी से गुजर जाते, जिसका मतलब क्या बोलते हैं हार्ट वीक है उसी में उसका काम ये हो जाता था। तो अपनी वादा वो रखते हैं और तीनों लोक में हर युग में उनका बोलबाला है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। वो सुंदर पॉइंट बोल रहे, ना से रोग हरे सब पीरा, सब प्रकार की डिजीज हनुमान जी को याद करने से चली जाती है जो हनुमान जी के को का नाम जप करता है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि हनुमान जी का नाम क्यों जप करें या हनुमान जी को क्यों याद करें, हम तो डायरेक्टली भगवान को याद करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली होता ऐसा है कि हम जब भगवान को याद करते हैं, लेकिन काम तो भगवान के भक्त ही करते हैं, भगवान से इंस्पायर होके या भगवान के नाम की महिमा का रक्षा करने के लिए कभी कभी भक्त लोग एकदम एक्शन में आ जाते हैं। सी जैसे आप लोग तो सब यहाँ दक्षिण भारत में हैं, आप लोगों को कहानी तो अच्छा से पता है, फिर भी मैं और एक बार बता रही हूँ कैसे वो भद्राचलम में भक्त रामदास की कहानी आती है, कैसे रामदास इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं और बहुत कष्ट करके मंदिर बनाते हैं, और अंत में जिस दिन मंदिर का इनॉग्रेशन होता है उस दिन सब बहुत बिजी है, खाना बना रहे हैं, कोई मंदिर को सजा रहा है, कोई तोरण बांध रहा है, कोई रंगोली कर रहा है, सारे बिजी है। और उस टाइम पे जो है वो खाना बनाने वाले जो है पानी को गर्म करते हैं, ऑयल को गर्म करते हैं ना खाना बनाने के लिए, पूरियाँ तलने के लिए, तो रामदास का जो छोटा बेटा होता है वो बाई मिस्टेक उसमें स्लिप हो जाता है और मर जाता है। तो जब उसकी लाश लेके आते हैं भक्त रामदास के पास, तो वो बहुत सुंदर एक भजन गाता है और वो भगवान को बोलता है कि भाई मैंने आपकी इतना सेवा की और अंत में आपने मुझे यही दिया, मेरे बेटे को भी आप रक्षा नहीं की, आपके भक्ति करने से क्या फायदा हुआ। और फिर वो भगवान को गिनाना शुरू करता है कि देखो मैंने आपके लिए जो हार बनाया वो इतने पैसे का है, सीता माता के लिए जो हार बनाया उसका इतना पैसा लगा और इसका इतना पैसा लगा, तो आप कैलकुलेट कर लो मैंने कितना आपके लिए किया और आप अल्टीमेटली मेरे को क्या वापस दे रहे हो। तो जब ये बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रफली जो है वो बोलते हैं कि ये क्या है, आप कैसे टाइप के भगवान हो, तो हनुमान जी से ये रहा नहीं जाता ये सुन के कि अरे मेरे राम जी को कोई ऐसा बोलेगा, तो वो इमिडिएटली जाते हैं और उस लड़के को फिर से सजीवन कर देते हैं। तो भक्तों को कभी कभी भगवान के नाम की रक्षा करने के लिए वो खुद जाते हैं कि अरे भाई मैं बचा दूंगा लेकिन मेरे ठाकुर जी का नाम को बदनाम मत करो। बहुत बार मैं एक कहानी बताती हूँ कैसे ठाकुर जी को तुकाराम की बीवी से बहुत डर लगता था, आवली जो है बहुत ज़्यादा जब झगड़ा करती थी भगवान के साथ, तो एक बार उसके बेटे को कुछ किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं तो पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि नदी के किनारे जब पानी लेने जाओ या कुएं के पास पानी लेने जाओगे तो वो लेडीज़ का गॉसिप प्लेस होता है, तो सब लोग कुछ ना कुछ गॉसिप करते हैं। तो ये भी वहाँ जाके गॉसिप कर दे, कह रहे मेरे बेटे को किडनी में स्टोन हो गया है, ये है वो है। तो यूजुअली लेडीज़ एक्सपेक्ट करती है कि भाई कम से कम कोई सांत्वना देंगे कि अरे आप ये डॉक्टर के पास जाओ, इधर जाओ, लेकिन इसको कोई सांत्वना नहीं देता है। सारे उसको चिढ़ाते हैं, तुमको क्या है, तुम्हारे घर का काम तो भगवान ही करते हैं, तो भगवान इतना भी काम नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे को ये हुआ तो भगवान को ही बोलो। तो इसको बहुत बुरा लगता है कि अरे मेरे नॉर्मल दोस्ती मेरे साथ कोई मेंटेन नहीं करता, मुझे देखने से सारे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे तो घर के छोटे छोटे काम भी विठलनाथ खुद आके करते हैं, तुम्हें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। तो उसको गुस्सा आता है, घर जाती है, अपना बेटे को उठाती है एक हाथ से और उसको खींच खींच के जो है विठलनाथ के मंदिर में ले जाती है और गाली देते हुए जाती है विठलनाथ को, बोलते तुम इसको ठीक करोगे नहीं करोगे, नहीं तो दू एक हाथ की। तो अपने चप्पल को एक हाथ से लेती है, अपने बेटे को एक हाथ से पकड़ती है, बोलते आज तो मारूंगी अगर इसको ठीक नहीं किया तो। अब जब वो ऐसा करके मंदिर के पास आ रही है तो रुक्मिणी देवी को इतना डर लग रहा है, बोले कुछ तो करो, अगर सच में मार देगी तो बदनाम हो जाओगे, आपके भक्त ऐसे भी होते हैं जो चप्पल से भगवान को मारते हैं, कुछ तो करो। ठाकुर जी सिर्फ हंस रहे। और जैसे ही ऑल्टर के पास में आ गई वैसे रुक्मिणी देवी इमीडिएटली उसके बेटे को ठीक कर देती है, बोलती है कि तुम्हारा बेटा ठीक है चले जाओ यहाँ से। तो फिर वो पीछे मुड़ के देखती है कि हाँ मेरे बेटा तो ठीक हो गया, उसका पेट तो अंदर चला गया, सब ठीक है। तो फिर वो चप्पल पहन के वापस चली जाती है बाहर। तो रुक्मिणी देवी बोलती है कि क्या करते हैं आप, आपके भक्त अजीब अजीब के भक्त, कोई मारने चला आता है तो कोई ये करने के लिए आ जाता है। तो कभी कभी भगवान का नाम बचाने के लिए भक्त लोग पहले खुद जाते हैं कि भाई ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन भगवान का नाम बदनाम मत करो, भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान के अलावा भी जो देवी देवता है या जो भी है, क्या उनमें भी ऐसी पावर है हमें ठीक करने के लिए या हमें ये करने के लिए। सी एक्चुअली ऐसा है, जब कोई बेटा आज्ञाकारी होता है तब पिताजी अपना सारा प्रॉपर्टी उस बेटे के साथ शेयर करते हैं बिना कोई टेंशन के, लेकिन बच्चा जब आज्ञाकारी नहीं होता है तब पिताजी नहीं देते उसको कुछ भी। उसी तरह से जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान क्या करते हैं अपना जो वैभव है, ऑपुलेंस है, अपनी शक्तियाँ है, वो अपने भक्त के साथ भी शेयर करते हैं, तो उनमें भी उतना सामर्थ्य होता है। जैसे हम तुलसीदास की कथा में सुनते हैं कैसे एक बार तुलसीदास जी जो है नहा धो के तिलक लगा के जा रहे कहीं, और एक विधवा अभी अभी उसका पति मर गया, तो रोते रोते जाए तुलसीदास जी के पैरों में गिर जाती है। तुलसीदास जी को पता नहीं वो विधवा है क्या है, कुछ भी पता नहीं है। एक लेडी आई है ना सौभाग्यवती भावा, बस उसको आशीर्वाद देते हैं, वहाँ पे सारे स्तब्ध हो जाते हैं, बोलते तुलसीदास जी आपने क्या आशीर्वाद दिया, ये तो विडो हो गई है, अभी अभी उसका 10 मिनट पहले उसके हस्बैंड जो है मर गए और आपने बोल दिया सौभाग्यवती। तो तुलसीदास जी राम राम करके चले जाते हैं, और पीछे मुड़ के जब ये लेडी देखती है तब उसका पति सजीवन हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरा भक्त एक बार आशीर्वाद दे दे तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, कि भक्त की बात तो मैं गलत नहीं कर सकता, और उसने एक बार बोल दिया सौभाग्यवती भव तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन तुम बताओ नमे भक्त प्रशत, तुम बताओ, क्योंकि अगर तुम बोलोगे मैं बोलूंगा तो मैं तो मेरी बात से मुकर भी सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त अगर एक बार ये प्रॉमिस दे देंगे तो फिर मैं बात से मुकर नहीं सकता। जब भक्तों का आशीर्वाद मिल जाता है तब ठाकुर जी भी कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे जीवन में भक्तों का आशीर्वाद होता है तब हमें कोई अटैक नहीं कर सकता। अब ठाकुर जी खुद ही जो है सरेंडर हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। सो आज ये हनुमान चालीसा का क्लास लेने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप कल से बोलोगे माता जी हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे, अब हरे कृष्ण महामंत्र बंद करें। हम सिर्फ हनुमान चालीसा को लिए हैं एक भक्त की ग्लोरी इसके बारे में जानने के लिए, एक भक्त कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी लीला, उसका गुणगान करके वो क्वालिटीज़ हम में भी आए, ये हमारा प्रयोजन है। पद्म पुराण में बोलते हैं कि आप जिसके बारे में चर्चा करते हो उसका 1% क्वालिटी आप में आता है। इसलिए हम भक्त की लीला का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब भक्त की लीला का चर्चा करते हैं तब भगवान खुश होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि अब से हम हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे, ये हमने लिया है पाठ हनुमान जी की ग्लोरीज के बारे में जानने के लिए। लेकिन हमारे परंपरा से ये जो महामंत्र कलयुग के लिए दिया हुआ है हमें तो उसी का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बस ये जो हम अलग अलग बातें सुनते हैं ये आनंद लेने के लिए है, क्योंकि जब हम भक्त की बात करते हैं तो भगवान की लीला उसमें सहज आ ही जाती है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है और हम इस लीला का आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। सो तपस्वी राजा प्रभु श्री राम सबसे श्रेष्ठ है और उनके सब कार्यों को आपने सहज से कर दिया। हनुमान जी सब जगह ये प्रूव भी करना चाहते हैं कि राम जी सबसे श्रेष्ठ है। एक बार ऐसा होता है कि जब पांडव लोग वनवास में होते हैं तो जयद्रथ जो है वो द्रौपदी का अपहरण करता है, और फिर अर्जुन और भीम जाते हैं और द्रौपदी को जयद्रथ से छुड़ा के आ जाते हैं। लेकिन वो दुख करते हैं कि हमारे साथ ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, जब देखो हम कोई ना कोई प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे मार्कंडेय मुनि होते हैं, और आप लोग सब जानते हैं मार्कंडेय मुनि की बहुत लंबी लाइफ स्पैन है, आई थिंक 7 कल्प कुछ उनको आशीर्वाद दिया हुआ था ब्रह्मा जी ने, उनको 7 कल्प तक चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद मिला था। तो फिर ये युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ में ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है। जब पांडव लोग वन में घूमते थे तब उन्हें कितने सारे मुनियों का ऋषियों का एसोसिएशन मिलता था, उनसे कथा सुनते थे। तब मार्कंडेय ऋषि उनको बताते हैं, बोलते तुम ही नहीं हो प्रॉब्लम में, इसके पहले जब ठाकुर जी खुद आए थे त्रेता युग में राम जी के रूप में तब उन्हें भी कितने प्रॉब्लम सहन करने पड़े थे, उनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था। तो जस्ट टू मेक हिम लिटिल हैप्पी कि तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ, राम जी की पत्नी का भी अपहरण हुआ था और सीता जी को रावण लेके चला गया था, और ये लोग सब इंटरेस्टिंगली कथा सुन रहे हैं बहुत अच्छा से। फिर ऐसा हुआ, फिर उन्होंने पुल बनाया, फिर ये हुआ। अब आपको पता है जहाँ भी राम की कथा होती है हनुमान जी वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, तो हनुमान जी भी वो कथा सुन रहे हैं। तो कथा के बीच में अर्जुन ने बोला, एक डाउट है मुझे। तो मार्कंडेय मुनि बोले, बोलिए क्या डाउट है। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, राम जी तो बहुत शक्तिशाली धनुर्धर है, तो भगवान है, तो उन्हें इतना कष्ट क्यों करना पड़ा, वो पत्थर को राम का नाम लिख के तैराना, वो इतने ये थे धनुर्धर थे, वो तो बाणों से ही एक पुल बना देते लंका तक, तो हो जाता था ना काम। तो मार्कंडेय मुनि बोलता है, मुझे पता नहीं उन्होंने बाणों से क्यों पुल नहीं बनाया। अब हनुमान जी को आंसर दिए बिना शांति नहीं मिल रही, वो झाड़ के ऊपर बैठे हुए सुन रहे हैं, वो सीधे खुदे हनुमान जी अपने रूप में नहीं दूसरे रूप में खुदे, एक वानर के रूप में। तो बोले कि मैं बताता हूँ उसका आंसर। तो अर्जुन ने बोला, बोलो। बोला, नहीं देखो, अगर उन दिनों में जो वानर भगवान के साथ जो हजारों लाखों करोड़ों जो वानर की सेना गई थी वे सब बहुत शक्तिशाली थे, और वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके पैर अगर उस बाणों के पुल में पड़ता तो वो बाण का पुल जो है टूट जाता था, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया था। अर्जुन ने बोला, मैं विश्वास नहीं करता, मैं अगर मुझे बोलो आज का आज मैं पुल बना देता हूँ, इतना शक्तिशाली बाणों से बनाऊंगा, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी को गुस्सा आया कि राम जी के बारे में ऐसा बोल रहा है। हनुमान जी ने बोला, बना के तो देखो, मेरी पूंछ रखूंगी तो तुम्हारा पुल ब्रेक हो जाएगा। अर्जुन ने बोला, अच्छा फिर तो चलो मैं अभी बनाता हूँ, देखते हैं। अब दोनों चले गए उधर, अभी पुल बनाना शुरू। अब अर्जुन ने बाण फेंका और बहुत लंबा पुल बना दिया। अब वो हनुमान जी को बोला थे कि आओ देखते क्या होता है. तो हनुमान जी बोले मुझे आने की जरूरत नहीं, मेरी पूंछ. हनुमान जी अपनी पूंछ लेते हैं और वो पुल पे रखते हैं, पुल टूट जाता है. अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर वो पुल टूट गया तो मैं अभी का अभी देह त्याग कर लूंगा. अब अर्जुन को तो ये आदत है, हर चीज में वो प्रॉमिस ले लेता है. अभी वो देह त्याग कर लेगा बोलता है. तो बोलता है कहाँ है लकड़ी लाओ. तो अभी वो लकड़ी वकड़ी लगाया, पूरा बनाया, बोलता है अभी मैं खुद रहा हूँ. वहाँ पे ठाकुर जी द्वारका में कुछ प्रसाद ले रहे हैं, सीधा उठ गए. रुक्मिणी देवी बोला क्या हुआ. बोला कुछ नहीं, वही रेगुलर अर्जुन का प्रॉब्लम, मैं अभी आता हूँ. तो घड़ी घड़ी खुदने के लिए तैयार रहता है ना, आई एम जस्ट कमिंग 5 मिनट्स. अब वो आते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं. फिर अर्जुन जब खुदने के लिए तैयार हो बोलता अच्छा है, ब्राह्मण ब्राह्मण का मुंह देख के खुदूंगा. फिर वो बोलते नहीं 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 रुको, पर तुम खुदना क्यों चाहते हो. नहीं नहीं मैंने प्रॉमिस लिया था, अगर मेरा बाण मेरा ये जो बाण का ब्रिज टूट गया तो मैं जो है ये करूँगा, मतलब आत्मत्याग देह त्याग कर लूँगा. फिर भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट द वे. क्योंकि जब भी आप कोई प्रतिज्ञा लेते हो तो आपको किसी को साक्षी रखना पड़ता है कि ये पर्सन प्रूफ है, बिना प्रूफ के ऐसा कुछ नहीं हो सकता. तो एक काम करो, तुम फिर से बनाओ, इस बार मैं साक्षी हूँ, तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा लो, उसके बाद फिर से पुल बनाओ, तब जाके होता है, नहीं तो ये दिस इज नॉट करेक्ट. बोलता अच्छा मुझे ऐसा ही रूल का पता नहीं था, ठीक है मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं फिर से बनाऊंगा पुल, इस बार अगर टूट गया तो मैं जो है अपना देह त्याग करूंगा. बोला ठीक है चलो गो ऑन. तो फिर से पुल बनाया. अब इस बार जब पुल बनाया तो फिर जो है हनुमान जी फिर गए, इस बार पुल टूटा नहीं. अब हनुमान जी इतना खुद रहे, जंप कर रहे लेकिन पुल टूट नहीं रहा है. हनुमान जी सरप्राइज के पुल टूटा क्यों नहीं. तो फिर जो है हनुमान जी अपने निज रूप में आके अर्जुन को बोलते हैं कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुल टूटा क्यों नहीं. और फिर कृष्ण जो वहाँ ब्राह्मण के रूप में आए थे वो भी अपने निज रूप में आ जाते हैं. और फिर हनुमान जी समझ जाते हैं, ओ अच्छा अच्छा तो ये आपका काम है. तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि नहीं मैंने पुल को नीचे से पकड़ लिया था. तो फिर अर्जुन को बताते कि भाई तुम घड़ी घड़ी ऐसी प्रतिज्ञा मत लिया करो, एटलीस्ट कंसल्ट मी, मुझे कितना डिस्टर्ब होता है, बार बार भाग के आना पड़ता है. तो ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा. तपस्वी राजा प्रभु श्री राम सबसे श्रेष्ठ है. हनुमान जी इसको बार बार प्रूव करते हैं. और उनके काज सकल तुम साजा, जो भी भगवान के काम है वो आप सरलता से पूर्ण करते हो. ऐसे हमारे नेबर्स की कहानी है ना, मैंने जगन्नाथपुरी, हमारे नेबर ही हुए ना जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी की एक कहानी आती है ना, कैसे बलदेव बलराम जी जो है एक बार जगन्नाथ जी से बोलते हैं कि तुम्हारे ससुर जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं. पता है ना भगवान के ससुर जी मतलब समुद्र, लक्ष्मी देवी समुद्र से आई थी ना, तो समुद्र देव जगन्नाथ जी के ससुर जी हुए. तो बलराम जी एक बार जगन्नाथ जी से बोलते हैं कि तुम्हारे ससुर जी इतना डिस्टर्ब करते हैं, इतना जोर जोर से आवाज़ करते हैं, ये पुजारी लोग जो मंत्र बोलते हैं सुनाई भी नहीं देता है, कोई प्यार से मंत्र बोल रहा है सुनाई भी नहीं देता, तुम क्यों ना अपने ससुर जी को बोलो कि थोड़ा सा शांत रहे. अब भगवान को ससुर जी के पास जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि जाएंगे तो यहाँ पे पत्नी नाराज हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो ब्रदर नाराज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है. तो वो दोनों के बीच में फंस जाते हैं. तो वो हनुमान जी को बुलाते हैं, बोलते तुम आके कुछ मदद करो. तो हनुमान जी बोलते मुझे क्या करना है. बोलते कुछ नहीं, तुम सिर्फ यहाँ पे खड़े रहो, जितना भी समुद्र का आवाज आता है तुम अपने कान में ले लो, मेक श्योर कि ऑल्टर के अंदर में आवाज ना आए तो बलराम जी शांत से रहे. तो फिर हनुमान जी वहाँ पे आते हैं और सारा समुद्र का जो वॉइस है वो ग्रहण कर लेते हैं. तो अभी भी हम जब पूरी जाते हैं तो हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं. वहाँ पे उसको हनुमान जी के उस रूप को वो लोग फेमसली बोलते हैं कान फोड़ा हनुमान. और पांडा लोग बोलते हैं कि यहाँ के जो हनुमान है उससे कोई वर मत मांगो, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता, कान में फूटा है. तो आप कुछ वर मांगेंगे तो भी वो दे नहीं पाएंगे, आपसे प्रणाम करके चले जाओ. और एक कथा आती है कैसे उन दिनों में वो समुद्र जो है वो जगन्नाथपुरी के अंदर में एंटर हो जाता था, कभी कभी पानी आ जाता था. तो उस पानी को कंट्रोल करने के लिए ठाकुर जी हनुमान जी को बोलते कि तुम वहीं खड़े रहो और मेक श्योर कि पानी अंदर में ना आए. तो हनुमान जी वहीं खड़े रहते थे, पानी को आने नहीं देते थे. लेकिन वो ओरिया स्टाइल का प्रसादम कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो अयोध्या चले जाते थे. तो वहाँ पे कौशल्या इतना अच्छे अच्छे वैरायटी बनाएंगी तो वहाँ पे प्रसाद लूंगा. तो जब भी प्रसाद लेने चले जाते थे तो समुद्र यहाँ आ जाता था. तो ठाकुर जी एक बार डांट दिए हनुमान को, तुम बार बार चले क्यों जाते हो यहाँ से. वो तो बस वही पेट का सवाल है, भूख लगती है कभी कभी, वहाँ अच्छी वैरायटीज बनती है तो मैं अयोध्या चला जाता हूँ. ठाकुर जी बोला कि तुम सुधरोगे नहीं. तो भगवान ने क्या किया, उनको पकड़ के वहाँ रस्सी से उनको बांध दिया. तो अब वो वहाँ पे बंधे हुए खड़े, बोलते तुम यहाँ से जा नहीं सकते, तुमको यहीं रहना है, समुद्र को कंट्रोल करना है. तो अभी भी आप जाओ तो देख सकते हो बेड़ी हनुमान जो बोलते हैं ना, बेड़ियों में उनको जकड़ के भगवान ने बांध के उनको रख दिया। तो तिनके काज सकल तुम साजा, राम जी के सारे काज अब बहुत ही सरलता से करते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आपसे जो भी कोई कुछ मांगता है तो आप उसको पूरा करते हो, उसे ऐसा फल मिलता है जिससे जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती। नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, चारो युग परताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बोलते हैं चारों युग परताप तुम्हारा, ऐसा नहीं कि जब राम जी थे त्रेता युग में तो तुम्हारा तुम बहुत फेमस थे, चारों युग में कोई न कोई लीला कोई न कोई सेवा तुम करते हो, चारों युग परताप तुम्हारा। हमें ये कहानी बहुत फेमस है, तुलसीदास जी जब इस भूमंडल में थे तो कोई ना कोई जैसे मैजिक हो जाता था, जैसे अभी विडो को जो है फिर से उनके पति को सजीवन कर दिया, तो काफ़ी फेमस हो गए थे। तो एक बार अकबर के मंत्री लोगों ने बोला कि ये बहुत फेमस है, ऐसे हिंदू लोगों के कोई साधु है। तो अकबर ने बोला मैं भी देखना चाहता हूँ उनको क्या मैजिक आता है। तो उनको बुलाते हैं अकबर की सभा में, तो तुलसीदास जी तो जाना नहीं चाहते लेकिन फोर्सेबली उनको लेके आते हैं, और फिर अकबर बोलते हैं कि दिखाओ तुम्हारा कुछ मैजिक दिखाओ, मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा मैजिक करते हो, दिखाओ कुछ मैजिक। तुलसीदास बोले मैं कोई मैजिक वैजिक नहीं करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा रहता हूँ, कभी कभी राम जी की कृपा हो जाती है। नहीं नहीं तुम झूठ बोले, कुछ तो दिखाओ, तुमको बहुत सारे मैजिक आते हैं। तो मुझे कोई मैजिक नहीं आता है, मैं सिर्फ राम का नाम लेता हूँ। तो फिर अकबर को गुस्सा आता है कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अकबर बोलता है इसको पकड़ो और जेल में डालो। तो सारे सैनिक आते हैं उनको पकड़ने के लिए, जैसे उनको पकड़ने के लिए आते हनुमान जी तो को कंट्रोल नहीं होता, उनको गुस्सा आ जाता है। तो साथ ही साथ हनुमान जी क्या करते हैं, उनकी पूरी वानर सेना को भेज देते हैं। तो अकबर के महल में एक साथ में पता नहीं कहाँ से लाखों की तादाद में जो है सब वानर आ जाते हैं, मंकीज घुस जाते हैं, कोई अकबर का मुकुट गिरा देता है, कोई अंदर में घुस जाता है, कोई सिंहासन के नीचे जाता है, कोई पिलर तोड़ने लगता है, पूरी सभा में पूरे राजमहल में पूरी जगह जो है ये वानर फैल जाते हैं। और फिर अकबर इमीडिएटली बोलते हैं कि एक मिनट, इसको आप पहले इसको छोड़ दो, इसके वजह से शायद ये हो रहा है। तो फिर मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं कि हमारे पूरे राज्य में इतने सारे वानर फैल गए हैं और सब ध्वंस कर रहे हैं, इमीडिएटली पहले इसको छोड़ दो। तो फिर तुलसीदास जी को जो है वो छोड़ देते हैं। तो साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी साधु संत की रक्षा करते हैं, और किसी साधु संत को कोई तकलीफ हो तो उन्हें सहन नहीं होती। इसलिए जब राम जी युद्ध जीत जाते हैं और हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं उनको मैसेज देने के लिए कि मैया चलिए आपको ले जाएंगे, आप राम जी जीत गए हैं, तब हनुमान जी वहाँ पे गुस्सा से एक बात बोलते हैं सीता माता को, बोलते हैं कि माँ मैं जब आपको देखने के लिए आया था ना पहले, तब मैंने देखा ये लोग सब आपको बहुत तंग कर रहे, ये सारी राक्षसियाँ। वो जो राक्षसियाँ वो क्या करती थी, सीता माता को हमेशा बोलते रहती थी कि तुम रावण की बात मान जाओ नहीं तो रावण तुम्हें ब्रेकफास्ट बना के खा लेगा, रावण तो जो है मनुष्य को खाता है, तो उनको डराते रहती थी। तो हनुमान बोला कि मुझे इतना गुस्सा आया था लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं पाया था, अब जब हम युद्ध जीत गए हैं तो अब बोलो तो एक एक राक्षसी को पकड़ पकड़ के मारूंगा तब जाके मुझे मजा आएगा। तो सीता जी बोलती नहीं नहीं उनको तुम नहीं मार सकते। तो हनुमान जी बोलते क्यों ना मारे, वो आपको इतना तंग किए थे। सीता जी बोलते कि वो उनकी गलती नहीं थी क्योंकि वे रावण के नीचे काम करते थे, तो रावण जैसे बोलते हैं उनको करना पड़ता है, उनका अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं था, तो आप उनको क्षमा कर दो। तो फिर हनुमान जी जब ज़्यादा तर्क करते हैं तब सीता माता बोलते क्यों, क्या तुम्हें उस भालू की और शिकारी की कहानी पता नहीं है। तो हनुमान ने बोला कौन सा भालू कौन सा शिकारी। तो सीता जी बोलते अरे सुनो मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। फिर सीता जी बोलते हैं कि एक बार जंगल में एक शिकारी शिकार करता है, तो वो एक जो है लायन को सिंह को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिंह तो मार नहीं सकता, सिंह उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो फिर वो उसके डर से शिकारी एक झाड़ पे चढ़ जाता है। अब जिस झाड़ पे शिकारी चढ़ जाता है उस झाड़ पे एक भालू बैठा हुआ है। अब ये जो सिंह है उस झाड़ के नीचे बहुत देर तक बैठा रहता है कि कभी ये नीचे उतरेगा तो खाऊंगा, लेकिन नीचे उतर नहीं रहा है, रात बहुत हो गई है। फिर वो सिंह क्या करता है, भालू को बोलता है देखो भालू तुम भी जंगल में रहते हो मैं भी जंगल में रहते हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, ये शिकारी सबको तंग करता है, सारे जानवरों को मारता है, एक काम करो तुम इस शिकारी को धक्का मारो उसको नीचे फेंक दो मैं उसको खा लूँगा, मेरी भूख मिट जाएंगी मैं चला जाऊँगा। भालू बोलता है इसने मेरे झाड़ की शरणागति ली है, मेरी शरणागति ली है, वो मेरे घर में आया है, मैं उसको कैसे नीचे फेंक दूँ, मैं नहीं फेंक सकता नीचे। अब ये सिंह जो है बहुत चालाक निकला, वो फिर जाता है शिकारी के पास, बोलता देखो या तो मैं तुमको खाऊँ या तो मैं भालू को खाऊँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ पेट भरना है, तुम एक काम करो इस भालू को नीचे धक्का मारो, मैं उसको खा के चला जाऊँगा, तुम अपने घर चले जाना। शिकारी ने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, उसने जाके भालू को धक्का मार दिया, भालू नीचे गिर रहा था, गिरते गिरते उसने क्या किया एक ब्रांच पकड़ ली और फिर से ऊपर आ गया। इस बार सिंह फिर भालू के पास गया, बोला देखा तुमने तो उसको आश्रय दिया, उसने क्या किया तुम्हारे साथ, तुमको नीचे फेंक दिया, अब मैं बोलता हूँ तुम उसको नीचे फेंको, मैं उसको खाता हूँ। तब भालू ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले अगर किसी का स्वभाव खराब हो तो उसके लिए मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों चेंज करूँ, वो उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, मैं किसी और के लिए अपना स्वभाव को चेंज नहीं करूँगी। डिवोटीज नेवर गिव टिट फॉर टैट, जो भक्त होता है उसको टिट फॉर टैट एटीट्यूड होता ही नहीं है, इसने मुझे एक बात बोली तो मैं उसको दसों बात बोलूँगा, वो डिवोटी का एटीट्यूड होता ही नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन मेरा तो नहीं है ऐसा स्वभाव, मैं क्यों बोलूँ। तो फिर हनुमान जी इतने ये व्याकुल हो जाते जब ये बात सुनते हैं कि मैया आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो बोला वो उनका स्वभाव है, वो राक्षस है, उन्होंने मुझे कष्ट दिया, मेरा स्वभाव ये नहीं है। तो सीता माता ने उसके विपरीत क्या किया, सारी राक्षसियों को गिफ्ट दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। सी जब हनुमान जी बहुत गुस्से में थे जब ये वृत्तांत हुआ, इसका उल्लेख एकनाथ जी की रामायण में भी आता है। एक बार संत एकनाथ रामायण की कथा कर रहे हैं, तो रामायण की जब वो कथा करते थे, वो बहुत अच्छे भक्त थे, कोई किताब से पढ़ के रामायण नहीं बोलते थे, उसको उनको दिखाई देता था कैसे कैसे लीला हो रही है। तो वो लीला में बताते हैं कि हनुमान जी अशोक वाटिका आए, अशोक वाटिका में सीता जी जो झाड़ के नीचे बैठी थी, वो झाड़ में जो फ्लावर्स थे सारे प्योर वाइट कलर के फ्लावर्स थे। अब हमें पता है जहाँ जहाँ राम जी की लीला होती है हनुमान जी भी आके सुनते हैं, तो हनुमान जी भी ये लीला सुन रहे हैं, बहुत आनंद से सुन रहे हैं, लेकिन जब ये बात आती है कि सीता जी जो झाड़ के नीचे थी उसके सारे फ्लावर्स वाइट कलर के थे, हनुमान जी सीधा नीचे खुद जाते हैं, एकनाथ जी को बोलते हैं एक्सक्यूज मी यू आर रॉन्ग हियर, सीता जी जो झाड़ के नीचे बैठी थी वो फ्लावर्स वाइट नहीं थे, वो फ्लावर्स रेड थे। तो एकनाथ जी ने बोला बट मुझे तो दिखाई दे रहा है वो फ्लावर्स वाइट थे, तो हनुमान जी बोलते हैं मे बी आपको दिखाई दे रहा होगा बट आई वॉज देयर इन दैट लीला, तो समझ में आ रहा है मैं हनुमान हूँ, मैं खुद था उस झाड़ पे, मैं बैठा था, मैंने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई मैंने दी है वो मुद्रिका। एकनाथ जी बोलते बट मैं अभी भी देख रहा हूँ वो फ्लावर्स तो वाइट ही थे। हनुमान जी ने बोला तुम बड़े बड़े बावरे हो, मैं बोल रहा हूँ जो फ्लावर्स रेड थे। अब दोनों झगड़ा करके बोले चलो राम जी के पास चलते हैं, अब दोनों राम जी के पास डायरेक्टली चले गए। राम जी कोई सभा में थे, बिजी थे, तो राम जी मिल नहीं पाए, तो फिर सीता जी के भवन में गए। सीता जी हनुमान जी को देख के बहुत खुश, बोलते आओ आओ आओ। फिर हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं माता बैठना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप बताइए अशोक वाटिका में आप थी, आप जिस झाड़ के नीचे बैठे थे वो फ्लावर्स वाइट थे कि रेड थे। सीता जी ने बोला वाइट थे। हनुमान जी बोला लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो फ्लावर्स रेड थे, मैंने देखे थे। सीता जी ने बोला कि बेटा जब तुम आए उधर तुम इतने गुस्से में थे रावण के ऊपर में कि तुम्हारी आंखें लाल थी इसलिए तुम्हें फ्लावर्स लाल दिखे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम जैसे हैं वैसे हम लोगों को समझने लगते हैं, राइट, हमें वैसे ही दोष लोगों में दिखते हैं। अगर हमें ज़्यादा भक्तों के दोष दिखते हैं ना तो समझ जाना चाहिए कि हम में है ये दोष। जिस तरह से कंप्यूटर में जो होता है स्क्रीन में वही प्रोजेक्ट होता है। अगर आप बोलो कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कंप्यूटर में टाइप नहीं किया था, ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन में ऐसा क्यों आ रहा है, हो ही नहीं सकता, जो सिस्टम में है वही प्रोजेक्ट होता है। जब हमें सब समय दूसरों में दोष दिखाई देते हैं मतलब वो दोष हम में है, क्योंकि अगर हम में वो दोष नहीं है ना तो हम दूसरों में वो दोष रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में वो दोष है ही नहीं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई भक्त ऐसा होगा क्या, क्योंकि हम में वो दोष नहीं है। लेकिन अगर हमें दोष दिखते हैं मतलब वो दोष हम में है, हम जैसे है पूरा जगत हमें वैसा ही भासता है, जो अच्छा है उसे पूरा जगत अच्छा लगता है, जो बुरा है उसे पूरा जगत बुरा लगता है। दुर्योधन को बोला था ना, बोले तुम दुनिया में सबसे अच्छे आदमी को ढूंढ के लाओ, दुर्योधन पूरा दिन ढूंढता है, बोलता है मुझे तो मुझसे अच्छा कोई लगा ही नहीं इस दुनिया में, सारे बुरे बेकार बदमाश लोग हैं। फिर युधिष्ठिर को बोलते हैं कि तुम जाके किसी एक बुरे आदमी को ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर बोलता है कि इस दुनिया में तो कोई बुरा है ही नहीं, मैंने पूरा दिन ढूंढा कोई मिला ही नहीं, मैं ही सबसे बुरा हूँ, मुझे तो और कोई बुरा मिला ही नहीं। तो जो जैसा है उसे चीज़ें वैसी ही दिखती है, जो अच्छा है उसे सब अच्छे लगता है, जो बुरा है उसे सब कुछ बुरा लगता है। तो चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवार। हनुमान जी साधु संत की रक्षा करते, असुर निकंदन राम दुलारे, आप राम जी के दुलारे हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हनुमान जी जो है वो अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि मतलब आप जानते हैं ना, अनिमा लघुमा गरिमा, बड़ा हो सकते हैं छोटा हो सकते हैं गायब हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग अष्ट सिद्धियों के आप जो है दाता है। नवनिधि, कुबेर के पास जो नवनिधि आती ना हनुमान जी को जो उन्होंने दी है, सी एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दाता। सी इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत भक्त हैं जिसके पास में अष्ट सिद्धि है नवनिधि है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी के पास है नहीं, वो दे भी सकते हैं दूसरों को, ये नहीं सब कर सकते, समझ में आया। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि, जैसे वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र मुनि थे, बहुत सारे ऐसे मुनि थे, उनके पास भी बहुत सारी सिद्धियाँ थी, लेकिन उनकी सिद्धि उनके पास थी, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी उसके दाता बन गए। कैसे उसके दाता बन गए? सीता जी ने ये बून उनको दिया था, बोला तुम इसके दाता बनोगे, तुम जिसको चाहो वो सिद्धि को आप दे सकते हो, तो निधि के दाता। हम देखते हैं वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, इनकी भी बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ थी। अगर आपको याद हो ये बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, कैसे वशिष्ठ मुनि के पास में कामधेनु गाय थी, और विश्वामित्र तो उन दिनों में कोई ऋषि नहीं थे, वे तो सिर्फ एक क्षत्रिय राजा थे, और वो अपनी सारी सेना को लेके आते हैं कोई युद्ध से। उन दिनों में जब ये लोग युद्ध करने के लिए यहाँ वहाँ जाते थे तो जंगलों से पास होके जाते थे, युद्ध करने के बाद या युद्ध के जाने से पहले साधुओं के आशीर्वाद लेके जाते थे। तो विश्वामित्र मुनि जब देखते हैं वशिष्ठ मुनि का आश्रम है तो सोचते हैं कि आशीर्वाद लेके जाएंगे। तो यूजुअली ऐसा होता था कि जब ऋषि का आशीर्वाद लोगे तो वो कुछ प्रसाद देंगे। तो विश्वामित्र मुनि अपने 100, विश्वामित्र मुनि नहीं थे तब, विश्वामित्र राजा थे तब, अपने 100 बेटों को, अपनी सारी सेनाओं को बोला तुम लोग सब यहाँ रहो, क्योंकि वशिष्ठ मुनि का आश्रम बहुत छोटा था तो इतने सारे लोग अंदर जा भी नहीं सकते, तो मैं आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो वो अंदर जाते हैं आशीर्वाद लेते हैं, तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं अरे तुमने सबको बाहर क्यों खड़ा रखा, सबको अंदर लेके आओ, मैं सबको प्रसाद खिलाता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि बोलते कैसे खिलाएंगे, मन में सोच रहा है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा झुपड़ी है, ये कहाँ से खिला देंगे। बोलते तुम पहले नहा धो के आओ तो सही, मैं सारी अरेंजमेंट करता हूँ। तो ये लोग सब जाते हैं नहा धो के आते हैं, जब आके देखते हैं तो सारी अरेंजमेंट्स हो गई है, इतनी वैरायटी, इतना सुंदर खाना। तो विश्वामित्र शौक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं खाने के बाद, प्रसाद लेने के बाद बोलते कि आप इफ़ यू डोंट माइंड मैं पूछ सकता हूँ कहाँ से, अभी अभी तो मैं देख के गए आपके पास कुछ नहीं था। फिर वशिष्ठ मुनि बोलते कि ये गाय देखते हो, कामधेनु गाय है, जो मांगो गाय ही देती है। तो विश्वामित्र को लोभ हो जाता है, बोलता है कि मुझे ये गाय चाहिए। आप क्या करेंगे साधु हो के, आपके पास में इतनी सुंदर गाय, इतना कुछ देने वाली, मुझे ज़रूरत है, मैं यहाँ का राजा हूँ, जो सबसे सुंदर सबसे अच्छी चीज़ होती है वो मेरी होनी चाहिए, मैं इसको लेके जाऊँगा। वशिष्ठ मुनि बोलते तुम नहीं लेके जा सकते, ये मेरी गाय है, नहीं मुझे चाहिए। वो ज़बरदस्ती करता है, तो कामधेनु गाय जो होती है, गाय के अंदर से सारे सैनिक बाहर आते हैं। सी वो गाय सिर्फ खाना ही नहीं देती थी, सारी सेनाएं बाहर निकलती है और युद्ध होता है, विश्वामित्र हार जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि अरे राजा बनना तो फ़ायदा नहीं है, भक्त बनने में ही फ़ायदा है, मैं इतना महान राजा लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाले साधु के पास में इतना ऐश्वर्य है, मैं जो इतना मेहनत करके राज्य के बाद राज्य इतना कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो बैठे बैठे भगवान का नाम लेके इतना बड़ा आदमी बन गया, मैं भी भगवान का नाम लूँगा। तो वो भी तपस्या करता है और फिर उसमें भी बहुत सारे पावर आ जाते हैं और फिर से जाता है वशिष्ठ के पास। बहुत लंबी कहानी, मैं यहाँ पे एक्चुअली बहुत मनोरंजक कहानी है, लेकिन फिर हमारा हनुमान चालीसा कंप्लीट नहीं होगा। तो एक अल्टीमेटली है विश्वामित्र को थोड़ा सा वशिष्ठ के ऊपर में क्या बोलते हैं ना, एक एनवियसनेस तो हमेशा के लिए रह जाती है कि अरे वो कितना मुझसे ज़्यादा सीनियर है, मुझसे ज़्यादा ये है। और हमेशा जो है उसके माइंड में ये खटकता रहता है। एक बार ऐसा एक बात हुई थी, भगवान राम की जो परंपरा है उनकी परंपरा में एक राजा हुए थे। वो राजा बहुत अच्छे थे, पुण्यशाली थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनकी एक छोटी सी इच्छा थी, वे स्वर्ग जाना चाह रहे थे। तो वे वशिष्ठ मुनि के पास जाके बोलते हैं कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ मुनि बोलते ऐसे भी तुम जाओगे, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, तुमने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, इतना गायों का दान किया है, प्रजा को अच्छे से देखा है, अच्छे से आपने रूलिंग किया है, पक्का तुम मरने के बाद जो है स्वर्ग ही जाने वाले हो। राजा बोलते मरने के बाद नहीं, मैं इसी शरीर के साथ में मुझे ऐसा आप स्वर्ग भेज दो। वशिष्ठ मुनि बोला वो पॉसिबल नहीं है, कोई भी अपना ये शरीर के साथ नहीं जा सकता, तुमको शरीर को तो यहीं त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद तुम जा सकते हो। नहीं, मुझे इसी शरीर के साथ जाना है। वशिष्ठ मुनि ने बोला तुम गलत मांग कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। अब इसको पता था वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों का जो है हमेशा ये रहता है, तो विश्वामित्र के पास जाता है। विश्वामित्र के पास जाके बोलता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोलता है ठीक है जाओ। नहीं ऐसा नहीं, मैं मरने के बाद नहीं, इसी शरीर के साथ। विश्वामित्र बोलता है तुम पागल हो क्या, कोई नहीं जा सकता इस शरीर के साथ, सबको ये शरीर तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये राजा बहुत स्मार्ट है, सी राजा मतलब पॉलिटिकल पीपल है ना, तो फिर वो एक बात लाइन में ऐड करता है, हाँ हाँ वशिष्ठ मुनि भी ऐसा ही बोल रहे थे कि कोई नहीं कर सकता ये काम, विश्वामित्र भी ये काम नहीं कर सकता स्वर्ग भेजने का। क्या उसने ऐसा बोला कि विश्वामित्र ये काम नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता, मैं जरूर भेज सकता हूँ तुमको स्वर्ग। राजा का काम हो गया, बोलता हाँ लेकिन वशिष्ठ मुनि तो ऐसे ही बोल रहे थे कि विश्वामित्र से भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकता, मैं अभी भेजूंगा तुमको स्वर्ग, इसी शरीर में तुमको स्वर्ग भेजूंगा, चलो होमम की तैयारी करो। तो सारा यज्ञ वगैरह तैयारी किया, पूर्णाहुति, और वो जो यज्ञ में जिससे घी डालते हैं ना, जो बड़ा सा चमचा होता है, तो अब वो क्या करता है, राजा को जो है उस चमचा पे रखता है और एक मारता है सीधा जाके स्वर्ग में। अब इंद्र देखता है कि अरे ऐसा शरीर लेके स्वर्ग में कौन आ गया, स्वर्ग में तो अलाउड ही नहीं है, तुमको शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। इंद्र बोला ये लगता है गलती से आ गया। इंद्र ने एक लात मारी फिर से नीचे। अब विश्वामित्र ने बोला कि अरे मेरा इतना अपमान, मैं जब बोल रहा हूँ, मैंने अपना पुण्य दे के इसको भेज रहा हूँ, तो इंद्र का क्या प्रॉब्लम है। इसने फिर से उस महाराज को लिया और चमचे से फिर मारा एकदम सीधा इंद्र के पास में। इंद्र बोला तुमको समझ में नहीं आता कि मैं कितना बार बोला हूँ ये शरीर छोड़ के जाओ। इंद्र ने मारी फिर से लात, फिर से नीचे, यहाँ से मारे वो, वहाँ से मारे वो, यहाँ से मारे वो, वहाँ से मारे। ये राजा बोला मुझे नहीं जाना है स्वर्ग में, मुझे नहीं, जब मेरी गलती हो गई मुझे छोड़ दीजिए। विश्वामित्र बोलते ऐसे कैसे छोड़ दूँ, चलो आ जाओ फिर से भेजता हूँ। ये बोलता लेकिन मेरा प्लान चेंज हो गया, मुझे और स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, कैसे, हाउ डेयर इंद्रा, ये फिर से भेजता। इंद्र बोलता हाउ डेयर विश्वामित्र, ये फिर से लात मार रहा, इसकी हालत इतनी खराब, यहाँ से मार, यहाँ से मार, पूरा मैं क्यों स्वर्ग में आना चाह रहा था, मैं किस किस मोमेंट में मुझे ऐसा आइडिया आया। अब वो कहाँ छुपेगा, तो भी विश्वामित्र उसको छुपने नहीं दे रहा, फिर से लेके आ रहा तुमको स्वर्ग भेजूंगा आ जाओ। अब जो है विश्वामित्र को भी दया आ गई, बेचारा उस राजा की तो हालत खराब हो गई, पहचान में भी नहीं आ रहा है बेचारा, अब उसका ना शरीर जो था वो भी बचा नहीं, ऐसा हो गया। फिर विश्वामित्र ने बोला कि ठीक है ये तो मेरा इज्जत का सवाल है, क्योंकि सारे देवता लोग भी अब तो एकदम सब आ गए खड़े होके कि तुम भेजो, हम फिर से भेजेंगे वापस उसको। फिर विश्वामित्र ने बोला कि मैंने आज तक जितना भी पुण्य किया है वो सारा पुण्य मैं देता हूँ, स्वर्ग नहीं भूमि में नहीं, मैं स्वर्ग और भूमि के बीच में एक नया स्वर्ग बनाता हूँ, इस स्वर्ग में इस राजा को स्थान मिलेगा। तो इसलिए उसका जो नाम था त्रिशंकु, राजा का नाम था त्रिशंकु, तो विश्वामित्र ने वहां पे एक नया स्वर्ग बनाया, त्रिशंकु स्वर्ग। तो अब उस त्रिशंकु स्वर्ग में जो है अभी भी वो महाराज वहां पे है, क्योंकि स्वर्ग नहीं जा सकते, नीचे नहीं आ सकते, तो बीच में जो है वो रहते हैं त्रिशंकु स्वर्ग में। तो यहाँ पे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि तो बहुत लोगों के पास में है, लेकिन हनुमान जी जो है उसके दाता है, वो किसी को भी यह सिद्धि दे सकते हैं। असबर दीन जानकी माता, किसने दिया ये सिद्धि का दाता, किसने बनाया, जानकी माता ने बनाया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इपड़ो अभी नो स्टोरीज, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बोलते तुम्हारे भजन जो करता है वो राम को पा सकता है, जन्म जन्म के उनके दुखों से वो दूर हो सकता है, अंतकाल में रघुपति के पास जा सकता है जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जो बहुत सिंपल है एक्चुअली, पुराने वैदिक काल में जो स्त्रियां होती थी वे कभी जप यज्ञ कुछ नहीं करती थी, सिर्फ पति की सेवा करती थी। और पति इतने पुण्यशाली होते थे कि वो जब जाते थे भगवान के धाम तो पत्नी को लेके जाते थे, उनको सेपरेटली कुछ करना नहीं पड़ता था। ये सच भी है, वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि पति जो भी पुण्य करता है उसका 50% पत्नी को जाता है। और हम देखते हैं इवन ध्रुव महाराज की कथा में कैसे ध्रुव महाराज जब जाते हैं तो अपनी माता को भी साथ में लेके जाते हैं। तो जो हनुमान जी को प्रार्थना करता है हनुमान जी उन्हें ले जा सकते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात है ही नहीं है। तो हनुमान जी का जो सेवा करते हैं या उनको याद करते हैं हनुमान जी उनको बहुत ईजी से भगवान से मिला देते हैं। भक्तों, नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि भक्तों की सेवा जो करता है वो भगवान से सरलता से मिल सकता है। तो उन दिनों में द लेडीज वेर लकी, उनके हस्बैंड प्योर डिवोटीज होते थे तो उनका सेवा करने से नहीं, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ, फिर कल से बोलेंगे हम जप नहीं करेंगे, आपने तो बोला हस्बैंड का सेवा करो तो काफ़ी है, हमें करना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना, 16 rounds भी करना पड़ेगा, आरती में भी आना पड़ेगा, क्योंकि अब हस्बैंड्स भी इतने प्योर डिवोटीज नहीं है कि आपको ऐसे ही लेके चले जाए। उन दिनों में ऐसा था, राघवेंद्र जो थे माधवाचार्य के उसमें आते हैं, वो जब सन्यासी बन गए तो उसकी पत्नी ने दुख से आत्महत्या कर ली, तो वो इतने पावरफुल थे वैकुंठ के दूतों को बुलाया, अरे इसको लेके जाओ, मतलब विमान को बुलाया, बोला आओ इसको लेके चले जाओ, तो अपना बीवी को वैकुंठ भेज दिया, उतने पावरफुल होते थे। तो इसलिए लेडीज को तब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पति की सेवा करो तो हो जाता था, लेकिन अब तो 16 माला करनी ही पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, और देवता चित्तन धरई हनुमन से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमंत बलबीरा। बोलता और देवता यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे, एक ही देवता आपका पूजा करेंगे हनुमान जी, और आप हमें भगवान से मिला दो। सो यहाँ पे हम हनुमान जी को प्रे कर रहे हैं एज ए गुरु, नॉट एज ए गॉड। ही इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट टू लॉर्ड राम, ही इज़ ए कनेक्शन टू लॉर्ड राम। लॉर्ड राम से हमें कनेक्ट कर रहे, लाइक ए गुरु वी आर प्रेइंग टू हिम, जस्ट लाइक ए गुरु से कोई डिसाइपल लॉयल होता है कि मेरे गुरु जैसे बोलते हैं मुझे वैसा ही करना है, राइट। जैसे ऑफकोर्स आजकल के कलयुग वाले तुम गुरु भी मार्केट में जैसे चीज़ें खरीदते हैं वैसे चॉइस करते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं ये गुरु ज़्यादा पावरफुल है, ये थोड़े कम पावरफुल है, इसकी ज़्यादा फेमस है, ऐसा हम गुरु को सेलेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं, यहाँ पे जिसको आपने अपना दिल दिया, हृदय दिया, अपना सरेंडर किया बस जिंदगी भर के लिए, वो ही मेरे गुरु और कुछ भी नहीं, राइट। सिर्फ एक आदमी एक कुत्ते को 2 lakh rupees में बेच रहा था, तो लोगों ने बोला कि भैया ये साधारण कुत्ता है, कोई बड़ा स्पीशीज कोई इम्पोर्टेड वाला भी नहीं है, आप इतने दाम से क्यों बेच रहे हो। बोलता नहीं, मैं इसलिए इतना दाम से बेच रहा हूँ क्योंकि अभी तक उसको 100 बार बेच चुका हूँ, उसका मतलब मैं 100 बार उसको बेच चुका हूँ, लेकिन 100 बार बेचने के बावजूद तो फिर से मेरे पास ही आ जाता है, उतना लॉयल कुत्ता है, इसलिए ज़्यादा दाम में बेच रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ सो लॉयल। तो जो भगवान के भक्त होते हो भगवान से गुरु से इतना लॉयल होते हैं, ऐसा नहीं कि कल को कोई बोलेगा कि भाई वहाँ पे देवी माता का मंदिर है एंड शी सो पावरफुल, हर चीज़ पूरा करती है आपकी हर विश, और फिर आप वहाँ चले जाओगे कृष्ण को छोड़ के राम को छोड़ के, नहीं, एक बार जिसको अपना मन दिया है बस वो ही हमेशा मेरे गुरु है। तो आपको सब चैतन्य चैतामृत में भी कथा आती है कैसे मुरारी गुप्त माने हनुमान जी, हनुमान जी चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार उनको टेस्ट लेते हैं, उनको पता है कि इनको राम ही पसंद है, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को बोलते हैं देखो मुरारी गुप्त तुम ऐसे करो, तुम जो है कृष्ण का नाम लिया करो, कृष्ण को अपने आराध्य देव बनाओ, कृष्ण से प्यार करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं। रात भर मुरारी गुप्त सो नहीं पाते, अब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सोचते हैं कि बेटर मैं आत्महत्या कर लूँ क्योंकि राम को तो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और अगर राम को भूल के कृष्ण की पूजा नहीं करूँगा तो चैतन्य महाप्रभु की अवज्ञा होगी क्योंकि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाके उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कितना कोशिश किया रात भर लेकिन फिर भी मैं राम को नहीं भूल पाता, मुझे राम से ही प्यार है, मुझे राम की जो रूप है वो ही ज़्यादा आकर्षणीय होता है कि चैतन्य महाप्रभु हंसने लगते हैं कि नहीं नहीं आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू, तुम राम की ही पूजा करो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कृष्ण की पूजा करनी है, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि तुम कितने राम के भक्त हो। जो एक बार जिन ठाकुर जी को अपना दिल दे दिया तो बस उधर ही रहना चाहिए। तो और देवता चिंतन, तो हनुमान जी के भक्त भी जो बोल रहे हैं कि बस हमें और कोई यहाँ वहाँ हम नहीं भागेंगे, बस आपका शरण लेंगे, आप हमें राम जी से राम जी के पास में पहुँचा दो। हमारी शिक्षाष्टकम के लास्ट में भी तो चैतन्य महाप्रभु का ये आता है ना, आश्लिष्य वा पादरतम पिनास्तुम मदर्शन मर्मातम करो तो वह यथा तथा विधात लंप तो मत प्राण नाथा सुसेवना पर। आप मुझे किक करो, मारो, डांटो, आप मुझे छोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन आपका हमेशा मैं जो है फॉलो करूँगा, आपको सरेंडर करके रहूँगा, आपके सिवाय मेरे दिल में और कोई का जगह नहीं है। हमारी तो लॉयल्टीज दो दो मिनट में बदल जाती है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें लगता है कि भगवान मुझे देख ही नहीं रहा है, मैं इस मंदिर में जाके कोई व्रत कर लूँ, ये कर लूँ, कितना इजीली हम यहाँ वहाँ वेवर हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी से, इस्कॉन से, भगवान कृष्ण से हमारी जो लॉयल्टी है हमें बना के रखनी है। मुझे एक भुरुजन प्रभु का एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है, मैं गुरुजन प्रभु की एक किताब पढ़ रही थी, आई थिंक माई ग्लोरियस मास्टर ऐसे किताब का नाम है, उसमें एक सुंदर ये आता है, गुरुजन प्रभु और एक भक्त शिला प्रभुपाद जी के खिड़की के पास में खड़े हैं, शिला प्रभुपाद जी अंदर रूम में है और वो भक्त रो रहा है कि मुझे प्रभुपाद जी से पर्सनल एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, और रोते रोते प्रभुपाद जी के खिड़की के पास में बैठे हैं, और प्रभुपाद जी सडनली आते हैं और खिड़की खोलते हैं और ये दोनों दिखाई देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कौन है, कौन है उधर, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कौन खड़ा है खिड़की के पास, और गुरुजन प्रभु बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बोलते हैं आपके कुत्ते, आपके कुत्ते जो आपके मर्सी के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे ये बात इतनी दिल को छू गई कि कितना सुंदर भाव था उनका अपने गुरु के प्रति, कि या सेवक भी वर्ड नहीं यूज किया, आपके कुत्ते हैं हम, तो हम वहाँ खड़े हैं आपके इसके लिए। तो बहुत दिल में छू जाने वाली बात थी कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद जी के ऊपर इतना प्रेम, इतना विश्वास था। और कोई कहानी नहीं बोलूंगी, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधु महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध सा की गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहिता, हृदय बसौ सुर भू सियावर रामचंद्र की जय। बस ये लास्ट में एक बात बोलते हैं तुलसीदास जी के, सीता राम लक्ष्मण ये तीनों आप हमेशा मेरे हृदय में विराजो। हमेशा ठाकुर जी तो हमेशा उनके हृदय में ही थे, हमने सुना है ना रामायण में, लास्ट में सीता माता जब राज्य अभिषेक हो जाता है तो अपनी बहुत ही महंगी वाली माला हनुमान को देते हैं, और हनुमान माला के एक एक बीड़ को लेके मुँह से तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, और जिस ज्वेलर ने वो माला बनाई थी वो दुख करता है कि सीता जी ने इस बंदर को दी क्यों, इसको समझ में नहीं आ रही है इसकी वैल्यू क्या है। और फिर वो पूछते हैं, वो जौरी जाके हनुमान जी को पूछे कि तुम इसको क्यों ऐसे तोड़ तोड़ के देख रहे हो, और हनुमान जी बोलते नहीं नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि इसके अंदर में सीताराम है कि नहीं है, अगर इसमें सीताराम नहीं है तो ये कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। तो फिर वो जौहरी बहुत गुस्सा में आके बोलते अच्छा तो तुम्हारे शरीर में सीताराम है क्या, नहीं तो इसका भी तो वैल्यू नहीं है। तो बोलते तुमको कोई डाउट है क्या, जरूर मेरे शरीर में सीताराम है, और वो इमीडिएटली अपनी छाती को फाड़ते और पूरी सभा में सब दंग रह जाते हैं, सीताराम वहाँ पे विराजे। और हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे शरीर में अगर सीताराम नहीं है तो इस शरीर का कोई काम नहीं। तो तुलसीदास जी बोलते ऐसे हमारे हृदय में भी सीताराम जी का वास हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे खत्म करेंगे। श्री हनुमान जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा।